हरे कृष्ण। तो आज के इस पवित्र दिवस पर आप सबका स्वागत है। आज के दिन श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी और राधा बन बिहारी जी की स्थापना हुई थी, राइट ना? वो भी श्री वृंदावन धाम में। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा वृंदावन बिहारी जी की जय हो। इतने सुंदर दर्शन शायद ही कहीं और होंगे। विशेष रूप से राधा रानी का दर्शन यहाँ पर अति सुंदर है, बहुत ही हृदय को लुभावने वाला है। तो हम सब लोग इस दुनिया में जन्म लेते हैं और फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और सबके एक दिन मृत्यु हो जाती है। और कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धोरे। हम सब लोग यहाँ पर अनेक वस्तुओं का भोग लेने के लिए आए हैं, आते हैं। सबको सुनाई पड़ रहा है क्या? सुनाई पड़ रहा है? और उस प्रयास में हम एक दिन अगर सौभाग्य होगा तो इस अनुभूति पर आते हैं कि चाहता तो हूँ लेकिन मिलता तो नहीं है। चाह तो बहुत रहा हूँ कि ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता है। तो वो उस व्यक्ति को सौभाग्यवान कहते हैं, भाग्यवान व्यक्ति है वो, जिसको ये अनुभूति होती है कि इस दुनिया के भोग में कोई दम नहीं है। फिर वो भक्तों का संग प्राप्त करता है और भक्तों के संग में उसे भगवान का परिचय होता है और भगवान का परिचय होने पर फिर वो नाम जप करने लगता है, चार नियमों का पालन करने लगता है, हरे कृष्ण का भक्त बन जाता है। हरि बोल। आप लोगों ने हरि बोल जोर से क्यों नहीं बोला? अरे आप लोगों को पता नहीं हरे कृष्ण संस्था का भक्त बनना कितनी भाग्य की बात है। केवल हम लोग हरे कृष्ण में इसलिए नहीं बता रहे हैं, चारों संप्रदाय का आप स्टडी करेंगे ना तो चारों संप्रदाय बोनाफाइड हैं। लेकिन इस संप्रदाय में श्री गौरांग महाप्रभु ने जन्म लिया है, उन्होंने कुछ सोचकर चुना होगा ना इसको। और इस संप्रदाय में बाकी तीन संप्रदाय के दो दो अच्छे अच्छे जो गुण है उसको भी सम्मिलित कर लिया है और ये गौड़ीय संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध है। और इसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति के विशेष वरदान यह है कि गौरांग महाप्रभु के जन्म के बाद 10,000 साल तक जो भी भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेगा वो इसी जन्म में गौलोक धाम पहुंच जाएगा। अभी भी थोड़ा कम ही बोला, हरे बोला आपने, अच्छी तरह से नहीं बोला, क्योंकि हमको अभी तक अनुभूति नहीं है इस वरदान का मतलब क्या है। हमको 10 जन्म तक रुकने की जरूरत नहीं है, इसी जन्म में अगर हम हृदय से भगवान के नाम के जप और कीर्तन के विधि को अपने आप को समर्पित करते हैं, उसका आश्रय लेते हैं, तो हम सब लोगों को एक विश्वास होना चाहिए कि हमारी योग्यता ना होने पर भी हमको वहाँ प्रवेश दिया जाएगा। ऊपर से हमारे परम प्रिय परम पूज्य श्रीधर महाराज कहते थे, श्रीधर स्वामी महाराज प्रभुपाद के शिष्य थे, वो कहते थे कि श्रील प्रभुपाद जी ने एक बैक डोर एंट्री खोल दिया है गौलोक वृंदावन में, पीछे का एक प्राइवेट दरवाजा खुला है जहाँ पर सारे इस्कॉन के हरे कृष्ण संप्रदाय के भक्तों को वो एंट्री देते हैं। अभी आप बोलेंगे क्या मालूम क्या सच है क्या झूठ है, ये सब श्रद्धा का विषय है। अल्टीमेटली भगवान है ये भी श्रद्धा का विषय है, भगवान के नाम में भगवान है ये भी श्रद्धा का विषय है, भगवान का नाम जप करके भगवान की अनुभूति होती है ये भी श्रद्धा का विषय है। उस दिन हम लोग एक बात कर रहे थे हमारे मीटिंग के अंदर की रामायण की कथा में नारद मुनि जी रामायण का गौरव करते हैं। हाँ वो ऐसा है कि नारद मुनि कहते हैं कि रामायण का पाठ अगर एकाग्र होकर, पाठ मतलब रामायण का श्रवण, रामायण का श्रवण एकाग्र चित्त होकर जितेंद्रिय होकर, यानी कि उस समय तक के लिए कम से कम इंद्रियों को काबू में रख के अगर किया जाए तो श्रवण करने वाले के 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और हजारों पीढ़ियों के रिश्तेदारों के साथ वो गौलोक चला जाता है। तो वो उसमें एक भक्त ऐसे हंसे जोर से, क्या मालूम ऐसे बहुत जगह भूतचूत लिखा हुआ है। तो उसके टीका में बताया गया चर्चा में कि जब श्रद्धा होती है तब ये सब सच हो जाता है। भगवान भी किसी के ऐसे बाउंड नहीं है, अगर आपकी श्रद्धा है तो सब कुछ प्रकट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम्स तथैव भजाम्यहम्। अगर आपको ये वाक्य सुन के श्रद्धा नहीं है तो आपके लिए वाक्य झूठ है वो। अगर आपको श्रद्धा है तो उसको सच करना भगवान का मतलब, भगवान अपना गर्व मानते हैं कि मैं सच करूंगा, इसको प्रकट करेंगे भगवान उस वाक्य को। क्योंकि किसी संत ने अगर कहा है तो भगवान क्या कहते हैं उसको, ओब्लाइज हो जाते हैं, हाँ मुझे पूरा करना है इसको। प्रभुपाद जी ने ऐसा उंगली दिखाया भारतीय विद्या भवन से, यहां पर हरे कृष्ण मंदिर होना चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उसको प्रकट किया कुछ सालों के बाद में, आपके सामने है वो सब कुछ। तो आप कह सकते हैं भाई बाय चांस हो सकता है, कोइंसिडेंस, कर्म धर्म संयोग सब सब कुछ होता है, ठीक है आपका अगर ऐसा विचार है तो ठीक है। लेकिन अगर आप समझते इस बात को कि शुद्ध भक्त की इच्छा को भगवान टाल नहीं सकते हैं, प्रेम से पूरा करते हैं उसको, तो फिर पूरा नजारा बदल जाएगा आपके लिए। कल ही मैं एक प्रवचन सुन रहा था, उसमें कहा गया है कि भगवान ने अपना जो काम है जीवों का उद्धार का, वो अपने शुद्ध भक्तों के हाथों सौंप दिया है, पूरा फुल टू कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उनको। हम लोग बोलते हैं ना बिजनेस लैंग्वेज में, आउटसोर्स कर दिया उसको, एक एजेंसी है शुद्ध भक्तों की, उनके हाथ में दे दिया उसको। जो भी रिकमेंड करेंगे उसको, जिसको भी सिफारिश करेंगे, वो गौलोक पहुंच जाएगा। इन्होंने कहा है ना, बस ठीक है ले लो उसको। सबसे पहले उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट राधा रानी को दिया, फिर राधा रानी के जितने शुद्ध भक्त हैं उनके आश्रित, वो सबको वो कॉन्ट्रैक्ट मिला। होता है ना ऐसे, दुनिया में भी ऐसे होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरे कृष्णा आंदोलन में जुड़ जाना, ये कोई विदेशी संस्था को जुड़ जाना नहीं है, ये एक पारलौकिक संस्था है। लौकिक संस्था नहीं है, लौकिक संस्था दुनिया में होती है और लौकिक काम करती है, ये संस्था पारलौकिक काम करती है। और क्योंकि संस्था से गौरांग महाप्रभु जुड़े हुए हैं, इसलिए मायापुर धाम भी जुड़ा हुआ है, और गौरांग महाप्रभु की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने वाले व्यक्ति को इतने सद्गुण प्राप्त होते हैं, इतने सद्गुण प्राप्त होते हैं, वो भी त्वरित, कि देवता भी उसके शरीर में निवास करना चाहते हैं, उसका संग करना चाहते हैं, उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। ब्रह्मा जी भी वो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाले व्यक्ति को जैसे ही वो जप करना शुरू करता है तो वो ब्रह्मा लोक में आरती पूजा की तैयारी करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं कि ये महामंत्र जो जप करेगा वो एक ना एक दिन गौलोक जाएगा, और जाएगा तो मेरे रास्ते से गुजरेगा। जब वो जाएगा मेरे रास्ते से, ब्रह्मा लोक के रास्ते से, तो मैं उसकी पूजा करूंगा, क्योंकि जो भगवान के नाम का जप करके योग्य बनता है गौलोक के लिए वो पूजनीय होता है। ब्रह्मा के द्वारा भी पूजनीय होता है वो, हमारे द्वारा तो होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से बताना चाहते हैं कि मेरे लिए भी पूजनीय है, मैं सबका परम प्रपितामह हूं, लेकिन मैं भी ऐसे व्यक्ति की पूजा करता हूं जो भगवान के नाम का जप करता है। तो पूरा हमारा जो विषय है जीवन का, भक्ति का, वो श्रद्धा पर आधारित है। श्रद्धा नहीं तो कुछ भी नहीं है, श्रद्धा नहीं तो क्या है, एनीथिंग इज, एवरीथिंग इज यूजलेस। श्रद्धा नहीं तो हम बोलेंगे आप मेरी माँ हो क्या, क्या प्रूफ है उसका? पिताजी को पूछेंगे क्या प्रूफ है उसका कि आप मेरे पिताजी हो? ये आजकल का जमाना है अश्रद्धालु लोगों का। लेकिन हमारा जो संप्रदाय है और इसमें जो जुड़े हुए लोग हैं, ये सब भाग्यवान लोग हैं, क्योंकि श्रद्धा से वो भगवान के पास में आते हैं। श्रद्धा है तो भगवान भगवान है, नहीं तो पत्थर है, संगमरमर का पत्थर है, या तो लकड़ी है, या तो चित्रपट है, या तो पेंट है, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको उसको देख के। लेकिन श्रद्धा है तो बिना शेप का पत्थर भी रहेगा, जो होता है ना गोवर्धन शिला, उसको शेप नहीं होता है, चौकोन होता है, कुछ भी होता है उसके अंदर, उसको भी भगवान उस पर प्रकट होते हैं आपकी श्रद्धा के द्वारा। संत नामदेव थे, एक बार ब्रह्म राक्षस उसके पीछे लग गए, तो नामदेव इतने कृष्ण भावना भावित थे तो उन्होंने कहा कि भगवान, अरे हमेशा तो अलग अलग अच्छे अच्छे रूप में आते हो, आज ऐसे कैसे रूप में आ गए आप? तो वो और जोर से घुर्राने लगा ब्रह्म राक्षस। तो बोले भगवान आज कुछ आप अजीब मूड में हो, आप अजीब मूड में प्रकट हो गए आप। ये कैसा रूप है आपका अद्भुत, जोर जोर से जलाने लगे। लेकिन इनकी श्रद्धा इतनी भी ढली नहीं उनके ऊपर, क्योंकि वो हर चीज में भगवान को देखने वाले जीव थे वो नामदेव जी। बाद में ब्रह्म राक्षस का अस्तित्व को स्पोर्ट करके भगवान प्रकट हो गए, उसमें से प्रकट होना पड़ा उनको। इतनी श्रद्धा अगर मेरे भक्त को है तो ब्रह्म राक्षस क्या किसी भी चीज से प्रकट हो सकते हो, तो ब्रह्म राक्षस इतना भयंकर वस्तु होती है, उसमें से वो प्रकट हो गए और दर्शन दिया नामदेव जी को। ये श्रद्धा का परिणाम है, और श्रद्धा पहले कोमल होती है, फिर वो निष्ठा के रूप में उसका रूपांतर होता है, जो फिर अचल हो जाती है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। साधना करने से वो श्रद्धा जो है वो निष्ठा के रूप में बदल जाती है। हमें वो निष्ठा को प्राप्त करना है। श्रद्धा ऐसी होती है कि श्रद्धा कोई आया उल्टा आदमी और जोर जोर से बात करने लगा, अगर वो बहुत मजबूत है आदमी बोलने में और उसका आर्ग्यूमेंट, तो हमारी श्रद्धा टूट सकती है, हम दोबारा माया में जा सकते हैं। लेकिन साधना करने के बाद में वो श्रद्धा जो है अनुभूतियों के बल के द्वारा, अनुभूति प्राप्त होने की वजह से वो श्रद्धा का रूपांतर निष्ठा में होता है, सुदृढ़ निष्ठा। भक्त लोग भी हमेशा भगवान से और संतों से प्रार्थना करते हैं कि मेरी जो श्रद्धा है वो सुदृढ़ निष्ठा में उसका रूपांतर हो जाए, ताकि मैं आपके चरणों के आधार से हिलूं नहीं, कोई भी माया का आंधी तूफान आएगा तो मुझे वहां से निकाल नहीं देगा वो, आपके चरणों के आधार से। जब ये निष्ठा उत्पन्न होती है, उसी के बाद में फिर रुचि भगवान के नाम के लिए उत्पन्न होती है, भगवान के नाम के लिए आसक्ति उत्पन्न होती है, फिर प्रेम भाव निर्माण होता है, तब दुनिया के लिए जो पत्थर है वो आपके लिए चलता बोलता व्यक्ति है, रोज बोलने वाला व्यक्ति है, रोज भावनाओं को व्यक्त करने वाली व्यक्ति है, वही कृष्ण भगवान। रोज मंदिर में दर्शन करेंगे तो कभी आपको नाराज दिखेंगे, कभी हंसते हुए दिखेंगे, कभी आपको लगता है प्रेम कर रहे हैं आपको, आपको सराहना कर रहे हैं, आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको। ये आम भक्तों का अनुभव है रोज का, इज इट नॉट ट्रू? आपको भगवान जो है वो कोई पत्थर की मूर्ति नहीं है, भगवान व्यक्ति है, और वही भगवान आगे जाकर हमारे लिए अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब हरे कृष्ण भक्त संस्था में आएंगे तो जप करेंगे, चार नियम पालन करेंगे, फिर संडे फीस्ट में आएंगे, फिर सत्संग में जाएंगे, फिर काउंसिलिंग मीटिंग में जाएंगे, फिर बोलेंगे एक दिन यात्रा जाना है, ऑटोमेटिकली हम भी जब ही आए थे तो कुछ ही दिनों में मायापुर में चैतन्य महाप्रभु की 500वीं जयंती का आयोजन था 86 में, तो हम लोग सबसे पहले मायापुर में गए थे 1986 में, 500th एनिवर्सरी। हाँ, तब से जो धाम का चस्का लग गया, अभी भी लगा हुआ है। इट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। हाँ, वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, सब लोग मजा कर रहे हैं, हाँ वड़ा पाव खा रहे हैं, पाव भाजी खा रहे हैं, मैकरोनी खा रहे हैं, सब लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान के प्रिय स्थानों में जा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, एक दूसरे से भगवान की कथा सुनने के बारे में उस चर्चा कर रहे हैं, अब कहाँ जाएंगे, अब कहाँ जाएंगे, सुबह मंगल आरती में उठ रहे हैं। ऐसा बहुत अद्भुत अनुभव, क्योंकि धाम भगवान से अभिन्न है, भगवान को दर्शन करने से जो अनुभव होता है वही अनुभव अलग प्रकार से धाम में जाने से होता है, बड़े विस्तार पूर्वक होता है, विविधता पूर्वक होता है। तो उसके बाद हम वृंदावन धाम गए, उसी साल सबसे पहली यात्रा थी हमारी, वो राधा गोपीनाथ मंदिर के इतिहास में सबसे पहली यात्रा। कितने लोग थे उसके अंदर, 5,000 6,000 थे क्या, 22 लोग थे, 22। उसमें हमारे गिरिराज प्रभु भी थे, 22 पीपल ओनली। आज तो हमका स्वप्न में गिरता है तो भी 2,000 लोगों का स्वप्न गिरता है यात्रा में। स्वप्न में भी अभी 22 लोग नहीं आते, इतना अभी 2,000 5,000 लोग कॉमन हो गए। तो वृंदावन धाम गए तो हमारे गुरुदेव राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर 6 महीना रुके थे हरे कृष्ण मन संस्था में आने के पहले। तो बरसाना गए, वहां पर भी लोगों का परिचय हुआ जो उनके साथ रहा करते थे। फिर गोवर्धन गए, गोवर्धन की परिक्रमा किया, नंदगांव गए, वहां से पुराने लोगों को मुलाकात हुई, वृंदावन आए, सब सप्त देवालय का दर्शन किया। सुबह 4:30 बजे उठते थे सब लोग मंगल आरती करने के बाद 5:30 को निकल जाते थे और रात को 11:30 बजे आते थे, और उस यात्रा में कोई भी प्रसाद का इंतजाम नहीं था, मतलब ऐसा अरेंजमेंट नहीं होता है कि खाना तो है कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पर लंच होगा, यहाँ पर ब्रेकफास्ट होगा, यहाँ पर डिनर होगा, ऐसा कुछ नहीं था। कौन सी जगह जाएंगे वो भी स्पॉन्टेनियस था, जहाँ मूड करे वहाँ जाते थे हम लोग। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम लोग निकले सुबह, और कैसा है ना, हमारे ये सब भक्त लोग साथ में थे, वो सब संत लोग थे, हमको बहुत भूख लगती थी ज़्यादा, तो हमने एक टोकरी लिया था प्रसाद का प्लानिंग करके, तो लेते लेके गए हम टोकरी को, और जहाँ जहाँ जब लंच का समय आया तो पूछा, महाराज जी इसको अभी ले लें क्या? तो महाराज ने कहा अगली जगह लेंगे। तो फिर ठीक है अगली जगह लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसे भी सबके बीच में कैसे बोलेंगे अभी खाना है करके। तो फिर अगली जगह बोले, महाराज अभी ले सकते हैं? महाराज बोलेंगे अभी थोड़ा रुको, आप अगली जगह लेंगे। ऐसा करते करते शाम हो गई, तो फिर बोला महाराज अभी डिनर लें क्या? तो महाराज ने बोला रुको अभी, रुको आप थोड़ा बाद में लेंगे। तो ऐसा करते करते हम लोग वृंदावन वापस लौट के आए, 11:30 बज गए। तो हमने पूछा महाराज अभी पा सकते हैं ना उसको? हाँ हाँ अभी पा सकते हैं आप। तो उसमें ना सब फंगस आ गया था, मतलब क्या बुरशी, लेकिन इतनी भूख लगी थी, लोग बड़े चाव से खा रहे थे। महाराज ने देखा उसमें बुरशी लगी हुई है, तो कहते हैं फ्री पेनिसिलिन, आपको पता है ना, वो एक साइंटिस्ट था, उसने बुरशी में से वो एंटीबायोटिक ढूंढ के निकाला था, पेनिसिलिन। तो महाराज ने कहा प्रसादम विद पेनिसिलिन, फ्री मिल रहा है आपको, इन्फेक्शन नहीं होगा आपको भी। ऐसे यात्राएं वहां करती थी वो, कहीं ठिकाना नहीं कुछ चीज का। एक बीच में एक दिन यात्रा में गए थे, तो उधर बीच में भूख लग गई, तो हमारे पास कुछ था ही नहीं उस दिन, तो कुछ झोपड़ियाँ थी, ऐसे मट्टी लिपी हुई थी झोपड़ियाँ। तो महाराज हमने कहा महाराज जाएं क्या भिक्षा करने के लिए? अरे जाओ, मैं बैठता हूँ यहाँ पर अक्षय भट्ट के पास, आप जाओ। तो हम लोग सब कुछ पति पत्नी थे, कुछ सिंगल थे, गए सब लोग। हर जगह पर हमको रोटी और अचार और सब्जी मिली, हम ऐसा इकट्ठा करके महाराज जी के पास आए, और महाराज जी ने हमको पेट उस अक्षय भट्ट के नीचे बैठ कर वो सारे भाकरी हमको डिस्ट्रीब्यूट किए, हमने बड़े प्रेम से बैठ कर वहाँ पे खाए। ऐसा अद्भुत अनुभव ना हमको करोड़ सौ रुपीज खर्च करके भी नहीं आएगा। हाँ ऐसा प्लानिंग करें हमारी यात्रा में भिक्षा करेंगे, भिक्षा करके ना हम उस घर में जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकते हो। जो उत्स्फूर्त रूप से हुआ उसका आनंद तो कुछ अलग था। तो इस तरह से ये श्री वृंदावन धाम की यात्रा हुई। तो अभी अगर समझो महाराज नहीं होते, भक्त लोग नहीं होते, तो हमने अभी एक व्यक्ति से हम मिले, हाँ इस 2 महीने के पहले, वैसे मैं उधर मदन मोहन जी के ऊपर जप कर रहा था सुबह के समय अकेला, तो ऐसे कुछ साउथ इंडियन लोग ऐसे भोले भटके से वहाँ पर आ गए, उनको चेहरे देख के पता चल रहा था कि इनको कुछ पता नहीं है, पर देख रहे क्या है ये, आई डोंट नो एनीथिंग। तो मुझे ज़रा लगा कि इनको बताना चाहिए, बेचारे ऐसे इतने दूर आए, साउथ इंडिया से मतलब बहुत दूर से आए ना वो, तो लगता है, तो पूछा तो मेरे गाँव के निकले वो, तो मुझे और ज़रा प्रेम आया, देहात्म भाव। तो मैंने उनसे बोला कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि ये क्या है? तो मैंने फिर मदन मोहन की कथा बताई उनको, फिर मैं उनको बोला अरे अभी बार बार बोले बांके बिहारी बांके बिहारी बांके बिहारी, बोला अभी कहाँ जा रहे हो बांके बिहारी? 6 बजे तो 9:30 को खुलता है, मतलब मंगलारती, मंगलारती नहीं होती बांके बिहारी की? नहीं होती मंगलारती की। फिर उनको मैंने कहानी सुनाई पूरी, फिर मैं जा रहा था वापस अपने आश्रम में, तो उनको बोला चलो आप चलो मेरे साथ, रास्ते में कालियाघाट भी आएगा, तो उनका भी उनको वहाँ जाके कहानी सुनाई। तो मैं ये क्यों बताया आपको, अगर हम ऐसे गए होते तो हमारी भी अवस्था वैसे ही होती जैसे उनकी थी, लेकिन क्योंकि हम एक संत के साथ में गए, भक्तों के संगति में गए, तो हमको एक अलग अद्भुत अनुभव आया। तो आज भी हमारे हृदय में ऐसा इंच है पूरा पूरा अंदर, लकीर की तरह पत्थर के ऊपर, यादगार भी है और अनुभूति भी वो दिव्य है। ऐसा नहीं कि कोई हाँ वहां पर वो आइसक्रीम खाया था, ऐसी अनुभूति नहीं है। अधिकतर हमारी अनुभूति ऐसे मटेरियल लाइफ में ऐसी होती है, पता है पापा हम लोग उधर कुल्लू वाले गए थे तो वहां पर वो आइसक्रीम खाया था, उधर वो आइस के बॉल के साथ खेले थे, ये सब भौतिक स्मरण है हमारा। लेकिन दिव्य अनुभूति संत के संग में प्राप्त होती है। फिर हमको बताया गया कि वृंदावन धाम जो है ना वो हृदय में लेकर घर जाना चाहिए। अरे ये क्या होता है, वे तो आए तो है यहाँ पर, वो घर लेके कैसे जाएंगे? तो ने कहा कि जब वृंदावन धाम में बैठकर हम कथा सुनते हैं प्रणयी भक्तों के संग, से सब स्थाने हेरी बो आमी प्रणयी भक्ति संगी, प्रणयी भक्त संगी, जब प्रेमी भक्तों के साथ बैठकर उस स्थान की कथा उनके मुख से सुनते हैं तो फिर एक ऐसा अजीब आकर्षण निर्माण होता है उस स्थान के लिए और भगवान के लिए भी, उस लीला के लिए भी, जो हमें चिपक जाता है, हम उसको चिपक जाते हैं। फिर वो यादगार जो है, वो याद, वो स्मरण, वो अनुभूति के रूप में वृंदावन आपके साथ चलता है। वैसे बहुत सारी यादें, ऐसे बहुत सारे वृंदावन के अलग अलग स्थानों के अनुभव आपके साथ चलते हैं और आपके साथ में घर पे जाते हैं और घर पे भी आपके वो याद दिलाते हैं बार बार, उसी याद में आप रहते हो। समझो, आसान है कि कठिन है? ये बहुत, क्या लगता है आपको, इजी और डिफिकल्ट? अगर चाहते हो तो इजी है ये, अगर नहीं चाहते हो तो मुश्किल है बहुत, लेकिन हो सकने वाला काम है। अगर आप उस धाम में रहते हुए इस भाव से रहोगे कि मुझे ये धाम का सार मेरे हृदय में अनुभूति और स्मरण के रूप में ले जाना है, तो फिर निश्चित रूप से आपके हृदय में अनुभूति और सार चलेगा और बंबई में भी आपको उसकी याद आती रहेगी बार बार। और ये हमारा सौभाग्य है अगर आपको बंबई में कभी नाश्ता करते समय, कभी घर आते समय, कभी कपड़ा पहनते समय अगर याद आ गई अचानक कि वो ठाकुर जी कितने सुंदर थे बरसाने के, कृष्ण बलराम जी वृंदावन के कितने सुंदर थे, वो दिन पता है उन्होंने हल धारण किया था, कितना अच्छा लग रहा था बलराम जी को देख के। ऐसे आपको अगर याद आती है वो फूल के जो श्रृंगार बनाए थे माता जी ने, वो संडे को लगाया था उधर कृष्ण बलराम जी को, इतना सुंदर था वो दर्शन, उसका वर्णन नहीं कर सकते, देखना चाहिए उनको, वो देखेंगे तो फोटो आए तो देखेंगे लेकिन शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते कैसे कैसे बनाए थे उनको, कमर पट्टी में क्या लगाया था, सर पे क्या लगाया था, वो बाजू में क्या लगाया था, वो धोती पर क्या लगाया था और कहाँ कहाँ क्या लगाया था, उसका वर्णन नहीं कर सकते। ठाकुर जी का शरीर बहुत दिव्य होता है, अगर आपको याद आए तो आपका जीवन सफल है, वृंदावन धाम आपके साथ है, आप वृंदावन धाम में हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यात्रा हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिसको हमें बार बार जाना चाहिए। लेकिन यात्रा का एक रहस्य है कि यात्रा का रहस्य यह है कि हमें उसका सार रूप में अनुभूतियां साथ में लेकर चलना है। और जब तक बंबई में है, पुणे में है, दिल्ली में है, तो ये सार रूप का आनंद जो है वो स्मृति के रूप में ग्रहण करते रहना है और फिर दोबारा जाना है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको पुष्टि देने के लिए, फिर उस अनुभूति का और पुष्टि देकर और मजबूत बनाकर फिर दोबारा ले जाना है। फिर जितने महीने शहर में रहना है, काम करना है, उसमें याद रखना है, उसकी याद करते रहना है, चर्चा करते रहना है, बोलने में या स्मृति में, फिर वापस जाना है, हो सके तो साल में एक बार, नहीं तो दो बार जब मौका मिलेगा तब। तो हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, परम गुरुदेव सब जगह बताते हैं कि धाम जो है वो एक स्थान जरूर है, निश्चित रूप से। यहाँ से वृंदावन जो है वो कुछ 1400 किलोमीटर दूर है, दिल्ली से 150 किलोमीटर साउथ ईस्ट, हाँ, आग्नेय दिशा में है, ये भी सच है, ज्योग्राफिकली भौगोलिक दृष्टि से ये सच है। लेकिन अगर आप जाएंगे वहाँ पर आज तो लगेगा कि इतने सुअर है, इतनी गंदगी है, इतने रास्ते खराब है, इतना म्यूनसिपालिटी का लाइट नहीं आती उधर, तो आपके लिए एक ऐसी भौतिक जगह हो गई वो, जैसा आप यहाँ देखते हो कोई ट्रेन टाइम पर नहीं आती, रिक्शा टाइम पर नहीं आती, कुछ बस टाइम पर नहीं आती, तो खटारा होती है सब, क्या क्या गंदगी उसके अंदर है। तो फिर वो वृंदावन धाम आपके लिए वृंदावन धाम नहीं, वो सिटी है ऐसी, एक मिसमैनेज्ड सिटी, इसका व्यवस्थापन ठीक नहीं है। लेकिन असल रूप में श्री वृंदावन धाम एक चेतना का आविष्कार है, इट्स अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। थोड़ा समझ में आपको आया क्या मैं क्या कह रहा हूँ? चेतना यानी कि हमारी जो अंदर की भावना होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर समझो एक हिरण यहाँ से आया और एक कवि ने उसको देखा, तुरंत कागज और पेन लेके कविता लिखेगा वो, कितनी सुंदर आंखें हैं, कितनी सुंदर चाल है उसकी, उसके त्वचा पर कितने सुंदर सुंदर डिजाइन हैं। और उतने में वहां से एक शेर आया और उसने भी हिरण को देखा तो उसने भी कागज लिया और कविता लिखने लगा, ऐसा होता है क्या कभी? बोलेगा अच्छा नाश्ता है, बहुत दिन के बाद मिल रहा है, इसको चेतना कहते हैं। हिरण वही है लेकिन एक की चेतना के अनुसार उसको वो काव्यमय वस्तु लग रही है और एक की चेतना के अनुसार उसको भोजन की भूख लग रही है उसको देखकर, तो वो चेतना की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते हो, एक बालक को देखकर खेल रहे हैं यहां पर समझो, और उसकी माँ उसको देख रही है, तो कितना अंतर है उसके अंदर, चेतना में कितना फर्क हो गया। आप बोले हाँ कोई बच्चा खेल रहा है उधर, और माँ देख रही है मेरा बच्चा खेल रहा है, कहीं गिर ना जाए वो, कहाँ गया वो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, आओ, भूख लगी होगी, प्यास लग रही, कितना देर से खेल रहे हो, पानी पियो। वो चेतना अलग होगी ना। तो मैं उस चेतना की बात कर रहा हूं जो हर एक व्यक्ति के हृदय में होती है, और वो चेतना का परम आविष्कार जो है वो धाम है, जो धाम के रूप में प्रकट होता है। तब वो हमारी चेतना अगर भगवत भावना भावित होगी तो वही मट्टी की गंदी जगह आपको लगेगी कि तो गोलोक धाम का हिस्सा है। इस प्रकार संत लोग उनको निहार देते। जब महाप्रभु चैतन्य जब वृंदावन में आए तो आते ही बेहोश होकर गिर गए कि मैं वृंदावन पहुंच गया। बार बार गिरते रहे। उसके बाद में महामंत्र का जप करते समय उनकी आंखों से आंसू, कंठ गदगद हुआ उनका। हाँ, बेहोश हो गए कई जगह पर, वो कई जगह गिर गए, कई उठ गए। बार बार सब गाय इकट्ठा हो गई, सब हिरण इकट्ठा हो गए, मोर नाचने लगे, तोता बोलने लगे, कोयल बोलने लगी, सबको वो अपनी अपनी भाषा में प्रतिसाद देने लगे। कुछ पेड़ों ने दंडवत किया महाप्रभु चैतन्य को, ये देखकर मैं तो हैरान हो गया। कुछ पेड़ों ने अपनी शाखाओं को झुकाकर फल अर्पण किए और फूल भी अर्पण किए, अपनी शाखाओं को थर्रा कर कुछ फूलों को महाप्रभु के चरणों में अर्पण किया। अभी हमको तो ऐसा कभी अनुभव नहीं आया कि हमारी चेतना उतनी स्थिति पर नहीं है। जितनी चेतना हमारी प्रगत रहेगी उतना और गहराई में हमको वृंदावन धाम दिखाई पड़ेगा। तो वृंदावन धाम वही है जो असल में है, लेकिन हमको वो दिखता नहीं है क्योंकि हमारी चेतना अभी तक शुद्ध नहीं है। जब चेतना शुद्ध होगी तो फिर वह धाम हमारे सामने धीरे धीरे प्रकट होगा। तीन प्रकार का दर्शन धाम का होता है। एक बाह्य स्वरूप होता है, हाँ, जो गटर है, सुअर है, गंदगी है, बंदर छीन रहा है आपकी बैग, चश्मा भी छीन रहा है, आपके केले भी छीन रहा है, आपको काट रहा है, आपको दुख रहा है, बहुत ताके लगे हुए हैं, ये सब आपका एक बाहरी दृष्ट है। अगर आपकी साधना आपने बहुत अच्छी की, मजबूत एकदम दिल से एकाग्रता से, तो धीरे धीरे आपको वो नहीं दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ पर तो राधा रानी का अभिषेक हुआ था, ये तो इमली तला है, यहाँ पर कृष्ण भगवान गौरांग हो गए थे, गौरांग महाप्रभु श्याम वर्ण हो गए थे, ऐसे आपको दिखेगा। वहां पर भी गंदगी होगी, कुछ बदबू आती होगी, आपको नहीं फर्क पड़ेगा उसका। आप जमुना जी को देखेंगे, अरे ये जमुना जी वही है, इसमें श्री कृष्ण भगवान जन्म होते ही गिरे थे जानबूझकर, जमुना जी के भाव को प्रतिसाद देने के लिए जन्म होते ही गिर गए थे इसके अंदर। पिताजी चिल्ला रहे कोई लो कोई लो, फिर जन्म होते ही गिर गए, गिरते ही जमुना जी ने रास्ता दिया, इतनी आतुर जमुना जी थी। ऐसा आपको लगेगा, ऐसा नहीं कि अरे सुवेज जा रहा है यहाँ से, हाँ टट्टी पेशाब का प्रवाह जा रहा है, इतना गंदा हो गया है, देखो चलने में इतनी बदबू आ रही है, बास से भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, ये दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। कुछ देर के बाद में आपको कुछ लोग आचमन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, आपको लोग कैसे मूर्ख लोग है ये, देखो वहां से टट्टी पेशाब का प्रवाह जा रहा है। लेकिन जिनके हृदय में वो चेतना है उनको वैसा ही लाभ मिलेगा। मुझे अभी भी याद है जब मैं एक बार उधर तपोवन में गया था महाराज जी के साथ में, महाराज जी हमारी यात्रा लेकर गए थे, बहुत साल के पहले की बात है, और मैं थोड़ा देर से कथा में आया तपोवन में, और मुझे भयंकर प्यास लग रही थी। तो मैं कथा जो एकदम तपोवन के गोदावरी के किनारे में ही थी, तो मैं सीधा कथा के बीच में से जाके दूर से नदी के किनारे गया जहां पर पत्थर एंड होके नदी शुरू होती है। वहां पर मैंने मेरे अंजुली से 5 या 7 बार भर भर के पिया, पेट भर के पानी पिया, पेट भर के, इतना संतुष्ट हो गया और आके कथा में बैठ गया। उसके बाद कोई आके कान में बोला, प्रभु जी इसके केवल कुछ ही फीट के पास में से टट्टी पेशाब निकलता है। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं डर रहा था लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मेरा साहस नहीं हुआ पानी पीने का कभी, लेकिन लेकिन उस दिन जो श्रद्धा से मैंने पिया, मुझे लगा कि श्रद्धा का परिणाम है ये, गोदावरी जी ने गोदावरी जी का स्वरूप प्रकट करके मुझे दिव्य लाभ दिया, और टट्टी पेशाब जो जा रहा था उसने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। तो यही है धाम की चेतना, श्रद्धा होनी चाहिए, फिर धाम आपको प्रकट करेगा। फिर आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यहां पर ये लीला हुई थी, वहां पर वो लीला हुई थी, यहां पर राधा कृष्ण ने बैठकर सिंहासन पर लोगों का सेवा स्वीकार किया था, यहीं पर गोपीनाथ जी प्रकट हुए थे, यहां पर रामोदर जी प्रकट हुए थे, यहाँ पर राधा रमन जी प्रकट हुए थे, ये सब आपको आकर्षित करेगा। फिर रोड का ट्रैफिक, रोड की टैं टैं, रिक्शा वाले का झगड़ा, ज़्यादा ले रहा है, 5 ले रहा 10 रुपये ज़्यादा ले रहा है, लूट रहा है, क्या तुम लूटने के लिए यहाँ पर धाम में नौकरी करते हो, ऐसा सब आपको बधा नहीं देगा। आप सबको पार करके भाई 5 रुपये तो हमारे जेब में से गिर भी जाते हैं मुंबई में कितनी बार, यहाँ पर 5 रुपये के लिए रिक्शा वाले से बहस कर रहे हैं, छोड़ो उसको, हम किस लिए आए उसका ध्यान रखो, ऐसे करके हम सब आगे चले जाते हैं, ज़्यादा फालतू बातों की चर्चा नहीं करते हैं और परवाह भी नहीं करते हैं। फिर उसके बाद में नित्य लीला है, उसका दर्शन तब होगा जब हम शुद्ध भक्त बन जाएंगे। उस जगह पर नित्य 24/7 चिरंतन काल के लिए लीलाएं चलती रहती है। हम तो एक कथा सुनाते हैं वहां जाके, अरे मोरकुटी में जाएंगे तो मोरकुटी में वहां पर भगवान और राधा रानी मोर बर मोरनी बने थे, लेकिन ऐसे अनंत लीलाएं हैं, अनंत बार भगवान मोर मोरनी बनकर वहां पर लीला करते हैं। हमको तो एक ही पता है कि सुनी थी हमने एक ही, लेकिन शुद्ध भक्त होने पर हमको उसका दर्शन होता है। ऐसे कितने संत हुए हैं, सूरदास जी भी हुए, हाँ वो तो अंधे थे, इतने भजन लिखे उन्होंने, मैंने उस दिन पता किया, थोड़ा इंक्वायरी किया तो 6 खंड है उसके, इतने बड़े बड़े 2500 रुपये के 6 खंड है उसके, उसके अंदर 2500 पद है उनके, और उन्होंने कोई कल्पना करके कविता लिखा नहीं, यमक 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 जोड़ा के, हमारे कवि कैसे होते पिक्चर के, वो टक तो टा को टा माँ को माँ जुड़ा के एक उनका गीत तैयार होता है वैसा नहीं होता है उनका। उन्होंने साक्षात भगवान के सारे लीलाओं का दर्शन किया था, अंधा होकर भी अपने अंतःचक्षु से, और जो जो दर्शन किया उसका वर्णन किया उन्होंने, जिन जिन लीलाओं का दर्शन किया उसको उन्होंने काव्य में उतारा, उसको गाया उन्होंने। वो स्थिति जो है वो परम स्थिति है, जब परम इस शुद्ध चेतना में संत लोग पहुंच जाते हैं तो उनको वो दर्शन होता है ठाकुर जी की लीलाओं का। जैसे हमारे माधवेंद्रपुरी जी ब्रज में आए थे, हाँ वो तो गौलोक के कल्प वृक्ष के अवतार हैं, जब ब्रज में आए थे तो बैठकर भजन कर रहे थे तो श्री कृष्ण स्वयं उनके सामने आए, बोले हमारे गांव में कोई उपवास नहीं करता, ये लो मैं मेरे घर से ताज़ा दूध लेके आया हूँ, इसको पियो, बाद में आके मटका ले जाऊँगा। फिर स्वप्न में आए, फिर बताया कि मैं यहीं पर हूँ पत्थर के नीचे, मुझे निकालो और स्थापन करो। ये तब होता है जब व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है, उसकी चेतना उच्च दर्जे पे होती है, और ये सनातन गोस्वामी जी के साथ भी हुआ है। वो तो भिक्षा करने गए, देख रहे कह रही वो तो माता जी डांट रही है उनको, मैया को बोला मैया ऐसे ठाकुर जी से व्यवहार नहीं करते हैं, तो ठाकुर जी हैं, तो मैया डर गई, अरे साधु बाबा कुछ बोल रहे हैं, अच्छा नहीं, मैंने अच्छा नहीं किया, तो एकदम ऐसे भाव से आदर भाव से उनकी पूजा करने लगी। ठाकुर जी को बोर हो गया, अरे आज तक तो इतना आनंद आ रहा था, ये साधु ने आकर पूरा आनंद बिगाड़ दिया। तो साधु के स्वप्न में आए, बोले तुमने आ तो पूरा रस ही बिगाड़ दिया हमारा, अभी एक काम करो तुम ही आके ले जाओ मुझे आप, और तुम्हारे संगी रहूंगा मैं अभी। और माता जी को स्वप्न दिया कि मैया अभी मैं वो साधु जो कल आया था ना उनके संग जाऊंगा, कल आएंगे तो मुझे दान दे देना उनको। तो मैया रोने लगी, लेकिन क्या करे ठाकुर जी की आज्ञा थी, तो ये भिक्षा मांगने आए तो उनको ठाकुर जी दे दिए उन्होंने। तो इन्होंने कहा कि अरे मैं तो फकीर आदमी हूँ, एक पेड़ के नीचे भी 3 दिन के ऊपर रह सकता नहीं हूँ मैं, वह अच्छा फल है अच्छी छाया है देखकर, तो आपको कैसे गे के घूमूंगा, और मैं भिक्षा मांग के खाता हूँ वो भी ऐसे गेहूं का आटा मिलता है मुझे, मैं तो उसकी गोली बना के जमुना जी में भिगाता हूँ और अग्नि में उसको भून देता हूँ और खा लेता हूँ, बोले जो भी तुम्हें मिलेगा जो भी तुम खाओगे मुझे भोग लगाना मैं स्वीकार कर लूँगा। तो उन्होंने ऐसे रखा उनको पेड़ के पास, अभी भी वो जगह है वहाँ पर द्वादश आदित्य टील पर जहाँ पर उन्होंने रखा था उनको। एक दिन बोले क्या सनातन जी आप रोज़ तो मुझे बिना नमक के ऐसे खिला देते हो, कितना पता है तकलीफ होती है मुझे। तो सनातन जी बोलते मैंने पहले ही कहा था आपको कि मेरे साथ में ऐसे ही होगा, मैं कोई नमक वमक लेके घूमता नहीं हूँ। और बड़े आज तुम तो नमक मांग रहे हो, कल मिठाई मांगोगे तो कहाँ से लाऊंगा मैं, देखो विचार कर लो। तो उन्होंने कहा नहीं 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 कोई बात नहीं। तो ये सब कब होता है, जब सनातन जी महाराज होते हैं तभी होता है, हमारे लिए नहीं होगा ऐसे। जब माधवेंद्रपुरी जी हो गए तो तब होता है सब कुछ, और उनका संग होगा तो हो सकता है कि एक आध नजर झलक आपको भी दिख जाए, है ना। तो ये सब भावना की बात है, जब भावना है तो ठाकुर जी हैं, और भावना नहीं है, शंका है, संशय है, कभी नहीं आएंगे वो तुम्हारे साथ, उनको जरूरत नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, तो संशय लेते रहता है कि ऐसा है क्या, क्या प्रूफ है इसका, तो बोलेंगे जाओ प्रूफ ढूंढते रहो और साइंटिफिकली रिसर्च करते रहो, कभी भी नहीं मिलूंगा तुमको मैं, कोई जरूरत नहीं ना ऐसे लोगों को मिलने की ठाकुर जी को, तो प्रेम के भूखे हैं वो, उनके पास कोई साइंटिफिक रिसर्च की जरूरत नहीं, उनको दुनिया ऐसी अद्भुत उन्होंने बनाई है, एक साइंटिस्ट का दिमाग भी फेल हो जाता है, समझता नहीं उसको ऐसे कैसे होता है। तो वो जो वैसे फॉर एग्जांपल हमारे विद्यानगरी में उधर मायापुर में एक वृक्ष, एक प्रकार के वृक्ष हैं एक एरिया में भरे हुए, वो कहते हैं बॉटनी के किसी भी वर्गीकरण में वो वृक्ष नहीं आता है, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी बॉटनिकल डिस्क्रिप्शंस, दो दो नाम होते हैं ना वो, उसमें वो प्लेट नहीं है। वो बोर्ड क्या था, वो एक कलम महाप्रभु चैतन्य ने जमीन पर लगाया था और उससे पेड़ निकला था, और उसमें कई पेड़ है उस वन में विद्यानगरी में, तो कलम से बना हुआ पेन है, पेड़ है। चैतन्य महाप्रभु ने एक जगह पर ऐसा आम की गुठली जमीन पर डाली थी, वो कुछ 15 मिनट के अंदर पूरा ऐसा पेड़ भर गया, बिना गुठली बिना छिलके वाला आम, एक साल तक देता रहा फल, और भक्त लोग खाते रहे, एक फेल खाया तो बस और कुछ खाने की जरूरत नहीं, एक साल तक वो पेड़ जो है वो बिना गुठली और बिना छिलके वाला आम देता रहा, जो कुछ ही क्षणों में पैदा हुआ था। अभी कौन सा साइंटिस्ट समझ सकता है ये झूठ बात है सब। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान क्यों दिखाया कि मैं कौन हूं, तो तात्पर्य क्या है सब बातों का, तात्पर्य एक ही है कि भाव होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए। जब श्रद्धा और भाव होगा तो आपके लिए वो चीज वो नहीं दिखेगी, वो जो सत्य रूप में है वो दिखेगी आपको। जैसे वो कवि को हिरण को देख के कविता स्फूर्ति है, और शेर को खाली भूख लगती है, अंतर है ना उसके अंदर उसी चीज को देखने के बाद। तो अगर आप अभी शेर हो तो आपको हिरण को देख के भूख लगेगी, और आप हिरण शेर से अगर कवि बन गए हो, मनुष्य कवि बन गए हो, तो आपको भूख नहीं लगेगी, आप कविता लिखोगे। चाहना क्या है आपके हाथ में, उसी प्रकार से ये वृंदावन है। वहां पर भी जाओगे मथुरा में और यही देखते रहोगे क्या गंदगी है, कैसे पंडा लोग हैं, क्या पता रिक्शा वाले चोर लोग हैं, क्या सिस्टम हो गया है, क्या दिन आ गए हैं, कितनी भीड़ हो गई है, हाँ कितना आवाज करते हैं, तो आप दोबारा नहीं जाओगे वहाँ पर। और अगर आपका बहुत दुर्भाग्य होगा तो कोई पंडा आपको आके लूट लेगा। मेरे भाई के साथ ऐसा ही हुआ था, अकेले गया था वो मथुरा में वृंदावन में, तो एक कोने में मंदिर में गया तो उसको पंडाओं ने घेर लिया, उसका जेब में जितना पैसा था सारा गोल 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 बोल के जबरदस्ती नहीं किया कुछ, ऐसे ऐसे बोले उनसे कि सारा जेब का पैसा निकाल के दे दिया उन्होंने उनको, और आज तक दोबारा वृंदावन लौट के नहीं गया वो। अभी वही वृंदावन है वो जिसमें हम जाते हैं, अनंत बार जा चुके हैं और बार बार जाना चाहते हैं उसमें, उसके बाद बार एक बार भी नहीं गया वो, क्योंकि जिस रूप से धाम का अनुभव उसको हुआ उसको लगा बहुत गंदी जगह है, आई डोंट वॉन्ट टू गो हियर। श्रद्धा और भाव होना चाहिए, और साथ साथ में श्रद्धावान भक्तों का संग भी होना चाहिए, तो धाम आपके आसपास में भी होगा तो प्रकट होगा। सब लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, थोड़ा जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर वृंदावन से आगे जाओगे तो और भी आपको लगेगा क्या है ये सब, सब जंगल कांटे सब जगह पर पड़े हुए हैं, चलते हो तो कांटे पाँव में घुस जाते हैं, यहाँ जाते हो बंदर अटैक कर लेते हैं, अरे क्या है सब ये वृंदावन है, हाँ बोलते भगवान की जगह है किधर, लगता ही नहीं कुछ, ऐसा अनुभव होगा आपको। ये भक्तों का संग रहेगा और शुद्ध भक्त का मार्गदर्शन में रहोगे, उनकी आज्ञा में रहोगे तो आपके दिव्य दर्शन होंगे। इसलिए मनुष्य जीवन की लाभ क्या है, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, तंत्र ज्ञान, उसमें प्रगति है जरूर, कोई बात नहीं उसके अंदर, लेकिन उससे आत्मा की संतुष्टि नहीं होती है। रियल हैप्पीनेस इज नॉट अवेलेबल थ्रू दैट, नहीं तो अमेरिका में सबसे लोग संतुष्ट, आत्मसंतुष्ट और आनंदी होते, सबसे अधिक टेक्नोलॉजी वहां पर है, ऐशो आराम सबसे अधिक वहां पर है, सबसे अधिक आत्महत्या भी वही होती है, सबसे अधिक रेप भी वहां पर होते हैं। क्यों ऐसा विरोधाभास क्यों है? क्योंकि तकनीकी प्रगति करने से आत्मसंतुष्टि नहीं प्राप्त होती है। और बांग्लादेश में सबसे अधिक गरीबी है, और उन्होंने ही, वो लोग जो बड़े तकनीक में प्रगति कर चुके हैं, उन्होंने ही रिसर्च करके फाइंड आउट किया है कि बांग्लादेश के लोग सबसे संतुष्ट लोग हैं। उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ऐसे नगण्य है बिल्कुल, लेकिन वो संतुष्ट हैं, क्योंकि आनंद भी एक चेतना की अवस्था है। इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस, आप कैसे रहते हो और कैसे देखते हो दुनिया को, उसमें आनंद हो या दुख प्राप्त होता है। तो 50 रोटी घी लगा कर खाने वाला आदमी भी दुखी रह सकता है, और आधी रोटी अपने परिवार के साथ रोड पर बैठ के खाने वाला भी बहुत सुखी हो सकता है। तो आनंद भी ये तकनीकी प्रगति का प्रमाण नहीं है, ये हृदय की अवस्था है। तो हम सब लोगों को अगर वृंदावन धाम समझना है तो हृदय की अवस्था को बदलना होगा, तब जाकर ये वृंदावन धाम प्रकट होगा आपके लिए। अभी आपको बताते हैं कि वृंदावन धाम जितना भी आचार्यों से सुना है वो ये है कि वृंदावन धाम एक चलायमान वस्तु है, डायनामिक पर्सनालिटी, कोई सावर व्यक्तिमत्व नहीं है, एक चलायमान व्यक्तित्व है, एक प्रतिसाद देने वाला व्यक्तित्व है। आप अगर वृंदावन धाम को अगर भगवान का स्वरूप समझकर चलते हो तो वृंदावन धाम भी, जैसे ठाकुर जी का विग्रह हमसे प्रतिसाद देता है, रिस्पॉन्स देता है, वैसे वृंदावन भी आपको एक प्रतिसाद देगा, आपको अनुभूति देगा, आपको प्रेम देगा, आपको आकर्षण देगा, क्योंकि वो भी व्यक्ति है। नाम जैसे भगवान से अभिन्न है वैसे धाम भी भगवान से अभिन्न है, वैसे लीला भी भगवान से अभिन्न है। उस रूप से आपको देखना चाहिए उनको। आप एक मनोरंजन करने वाली कथा के रूप में लीला सुनेंगे तो मनोरंजन जरूर होगा आपको, लेकिन दिव्य अनुभूति नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये उस भावना से सुनेंगे, उस भाव से सुनेंगे, तो मनोरंजन तो होगा ही, साथ साथ में दिव्य अनुभूति भी हो जाएगी आपकी। तो why not take two benefits than one benefit? क्यों एक चीज करने से एक ही लाभ ले, अगर दो लाभ अवेलेबल है? बुद्धिमानी की बात यह है कि वो दो लाभ लेकर रहेगा, अगर वो दो लाभ मिलने वाले हैं तो। अगर समय दे रहा है, अगर निकाल कर वहां पर अपनी शक्ति भी खर्च कर रहा है तो दोनों लाभ लेकर जाएगा वो, क्योंकि वो बुद्धिमान है। हमको भी ऐसा ही बुद्धिमान बनना चाहिए। तो वृंदावन धाम एक व्यक्ति है जो आपके भावना के अनुसार आपके सामने प्रकट होती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उस धाम में जाओगे और कुछ पाप का कार्य करोगे, उसमें सिगरेट पियोगे, तम्बाकू खाओगे, किसी को चीटिंग करोगे, धंधा करोगे, और इसी भावना से वहां जाओगे और भोग लेने का प्रयास, अरे भारती में डोसा अच्छा मिलता है, अरे उधर सोन पापड़ी अच्छी मिलती है, वो लोहे बाजार में वो अच्छा मिलता है, उसी भाव से अगर आप जाते रहोगे तो फिर आपको ज्यादा प्रकट नहीं होगा कुछ, केवल दुकान सिल्क और ये वो सब प्रकट हो जाएगा। और अगर भगवान का अनुभूति करने को जाओगे तो धाम भी अपना दरवाजा खोल देगा, और अगर पाप करोगे वहां जाकर तो धाम अपने गौरव को छुपा लेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण सही पता नहीं, लेकिन जैसे हनुमान जी गए उधर संजीवनी के पहाड़ पर, तो पहाड़ को नॉलेज नहीं था कि ये कौन व्यक्ति है, किस काम के लिए आ रहा है, सारे जड़ी बूटियों को छुपा लिया उसने, अप्रकट कर दिया। जो चमक रहे थे बहुत तेज से, वो एक अनजान व्यक्ति जानकर हनुमान को उसने छुपा लिया, फिर हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा के लेके गए वो। वैसे धाम के अंदर वो इंडिपेंडेंस और शक्ति होती है कि जैसा यात्री आएगा उसके सामने प्रकट करना है कि नहीं करना है, क्या छुपाना है, क्या प्रकट करना है। तो वृंदावन में बहुत सारे स्थान है, कई लोग डकैत रहते हैं कई जगह पर, तो वहां पर आपको लगेगा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, और जहाँ पर संत रहते हैं जैसे बरसाना में रहते हैं, वहां जाएंगे तो आपको अंदर जाते ही आपको दिव्य अनुभूतियां होने लगेगी, एक दिव्यता का अनुभव होने लगेगा, क्योंकि संत का तपस्या और भजन करने से धाम अपना पूरा गौरव प्रकट कर लेता है, और उस जगह पर जो भी जाएगा उसको भी वो प्रकट अनुभूति प्राप्त होती है उनकी दया से, जिन्होंने वहां पर भजन किया और तपस्या किया है। और आपका उसमें यश क्या है कि आप ऐसी जगह पर जाने का प्रयास तो कर रहे हो जहां पर संत ने भजन किया है, दर्शन करने आप जा रहे हो श्रद्धा से, उसकी वजह से संत के कठोर प्रयास से जो अनुभूति प्रकट हुई है उसका लाभ आपको भी होता है। तो ये बातें समझना बहुत जरूरी है। इसलिए धाम को जाने के पहले एक प्रवचन होता है आत्मा की तैयारी करने के लिए, चेतना की तैयारी करने के लिए, कि किस चेतना के साथ में धाम में जाना है, और वहां पर उस चेतना के साथ में क्या देखना है और क्या देखकर दुर्लक्ष करना है, किसको देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं होना है और आगे जाना है उसको लांग कर, इसकी तैयारी करनी पड़ती है, तब जाकर धाम आपको आपका अनुभूति देगा अपनी अपनी, तब आपकी यात्रा सफल होगी। तो इसलिए धाम एक व्यक्ति है, चलायमान पर्सनालिटी है। और ये वृंदावन धाम जो है, ये तो कैसे पता है आपको, बाहर से कुछ दिख रहा है, फिर और थोड़ा दिख रहा है, फिर और अंदर की बात, फिर और गहराई की बात, फिर और गहराई की बात, ऐसे वृंदावन है। इसके कई स्तर हैं, जो दिखता है आपको ऐसा नहीं है एक पेड़ है, यहाँ पर तो राधा रानी का अभिषेक हुआ था, एक बात है। लेकिन जब नारद मुनि गए थे कुसुम सरोवर और एक पेड़ के नीचे बैठ के उन्होंने भजन शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो उनको ध्यान में क्या नजर आया कि वो अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे, तो उनको नजर आया कि वो अशोक की जो वृक्ष है वो गोपी बनकर सज धज कर रास में प्रवेश कर रही है। तो एकदम वो चौंक गए कि जिस पेड़ के नीचे मैं बैठा हूं वो पेड़ गोपी का स्वरूप धारण करके रात को रास में प्रवेश कर रहा है, और वो केवल वो वृक्ष नहीं, सारे वृक्ष जो है वो सारे गोपी बनकर प्रवेश कर रहे हैं। ये नारद मुनि को अनुभूति प्राप्त हुई, क्योंकि वो नारद मुनि थे, उनकी चेतना वो इतनी श्रेष्ठ थी। तो एक तो था देख रहे हैं कि अशोक अशोक वन है, कुसुम वन के बीच में एक अशोक वन है, यहाँ पर ठाकुर जी ने लीला किया था, एक दृष्टिकोण है। और एक गहराई का अंतर दृष्टिकोण ऐसा है, वो अनुभूति प्राप्त करा दी धाम ने कि ये केवल अशोक के वृक्ष नहीं है, ये गोपियाँ हैं जो वृक्ष के रूप में भजन कर रही हैं और रात में अपना स्वयं का रूप प्रकट करके रास में प्रवेश कर रही हैं, ऐसा धाम है ये। और वृंदावन में अगर आप पेड़ देखेंगे तो कदंब है, तमाल है, अश्वत्थ है, बरगद है, हाँ पीलू है, बहुत सारे पेड़ हैं उधर, या तो वो राधा रानी के स्वरूप है, या तो संत महात्मा है, या तो साधु लोग तपस्या कर रहे हैं उधर, लता पता में राधा रानी का नाम है, ऐसे दिव्य अनुभूति आपको हो सकती है। या तो आप देखेंगे अच्छे आम लगे मुझे कब मिलेंगे, या आप देख सकते हैं, या तो आप लगेगा कि ये तो भगवान का धाम है, तो कल्पना वृक्ष है। हाँ तीसरा बात है कि वो कल्पना वृक्ष है, एक राधा रानी का स्वरूप है, एक साधु महात्मा भजन कर रहे हैं उस पेड़ के रूप में, या तो वो कल्पना वृक्ष है, यानी कि आपकी सारी दिव्य इच्छाओं को पूरी करने का सामर्थ्य रखता है वो। तो पेड़ को आप पेड़ के रूप में देख रहे हैं, या तो आप ऐसे भाव से देख रहे हैं, तो वैसे भाव में वो पेड़ आपको अनुभूति दिलाएगा। खैर ये पेड़ का बात निकला हुआ है तो आपको ये बताना जरूरी है, धाम के जो पेड़ है ना साधारण नहीं होते, इन पेड़ों में एक दिव्य शक्ति होती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो इस क्षेत्र में अदृश्य रूप में जो नित्य लीला चलती रहती है उसको निहारते रहते हैं, और वो लीलाओं का जो सार है उसको ग्रहण करते रहते हैं नित्य रूप में कॉन्स्टेंटली। और जब आप जैसे अच्छे प्रामाणिक भक्त वहां पहुंचते हैं तो वो सार जो है वो उनको दे देते हैं। ये मुझे बात प्रत्यक्ष हमारे गुरुदेव ने कही थी, जब मैं नासिक की एक बार यात्रा लेने को चल रहा था तो उन्होंने मुझे बोला बैठो बैठो बताओ कहाँ कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ कहाँ कथा करोगे। तो एक जगह वर्णन में मैंने बताया कि एक जगह ये कथा हमारे होटल के रूम में हम करेंगे, फिर हम लोग वहां जाएंगे। महाराज ने कहा नहीं, कभी भी होटल के रूम में और होटल के हॉल में ज़्यादा कथा मत करना, जितना हो सके उतना, जितना हो सके उतना धाम के पेड़ के सहारे बैठकर कथा करना, क्योंकि धाम का जो पेड़ है वो आपके कथा में इतनी पुष्टि देगा, इतनी अनुभूति देगा, अपना सारा सार जो ग्रहण किया है वो आपको अर्पण करेगा, और उसके द्वारा आपकी बोली जो है वो उसकी कृपा से बहुत आनंदी हो जाएगी और लोगों को लाभ होगा उसका। ये धाम के पेड़ों की, आम तौर के पेड़ों की भी शक्ति है, ये धाम के पेड़ों की विशेष शक्ति है। आम तौर के पेड़ जहाँ पर शहर में भी है उनके अंदर भी ये शक्ति होती है, जो जो चेतना उनके आसपास चल रही है उसको वो ग्रहण करते हैं, इसलिए वो सिकड़े हुए रहते हैं। देखो आप कभी भी किसी जगह के पेड़ों को देख के आप समझ सकते हो कि ये डिवाइन प्लेस है कि ये बहुत ही भौतिक जगह है। जो सिकड़े हुए एकदम ऐसे लुकड़े पेड़ होते हैं ना वो शहर में होते हैं, क्योंकि पेड़ की जो स्वाभाविक अवस्था होती है उनको दिव्य चेतना की आवश्यकता, एटलीस्ट सात्वगुण की आवश्यकता होती है, तब आपको बड़े बड़े दिखाई पड़ते, बहुत बड़े बुंदे वाले, बहुत विस्तार वाले, शहर में नहीं मिलेंगे आपको ऐसे। उनका स्वास्थ्य बिगड़ते बिगड़ते वो इतने इतने से हो जाते हैं, क्योंकि चेतना इतनी नेगेटिव है वहां पर। गांव जाएंगे तो बड़े दिखेंगे, धाम में जाएंगे तो बड़े 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 पेड़ दिखेंगे आपको। वो देखो कालेघाट का पेड़ कितना बड़ा बुंदा है उसका, देखिए भांडेरवट में जाकर कितना बड़ा बुंदा है उसका। नंदगांव में जाइए आप, काम्यवन में जाइए, देखते रह जाएंगे आप पेड़ों को, क्योंकि उनको सब दिव्य वातावरण प्राप्त है वहां पर, सूक्ष्म रूप से, बाह्य रूप से ना हो लेकिन सूक्ष्म रूप से। इसलिए आप यहां पर भी जाओगे, अभी यहां पर धीरे धीरे धाम प्रकट हो रहा है, तो इन वृक्षों का आदर करना, क्योंकि ये वृक्ष भी कल्प वृक्ष है। अभी हम आज के प्रवचन के मूल विषय पर आएंगे। तो अभी मूल वृंदावन तो मथुरा में, और यहां पर भी एक वृंदावन प्रकट हो रहा है, तो क्या उसको माने या नहीं माने, मतलब व्हाट इज इट? एक आनंद के लिए बगीचा बना के रखा है कि सब लोग आके थोड़ा निसर्ग का अनुभव करेंगे, थोड़ा सा पेड़ वेड़ के बीच में बैठेंगे जो शहर में नहीं मिलता है, ये योजना है कि क्या है? प्रभुपाद जी ने कहा था, जैसे कहा था भारतीय विद्या भवन के सामने खड़े होकर, कि यहाँ पर एक मंदिर होना चाहिए, डंडा उठाकर दिखाया था और वहीं पर मंदिर प्रकट हो गया। वैसे उनकी इच्छा थी कि सब लोग तो विदेश विदेश से और दूर दूर से वृंदावन धाम नहीं पहुंच पाएंगे, और कभी कभी पंडागिरी से जाकर भी परेशान हो जाते हैं वो, कभी कभी वहाँ की दुर्व्यवस्था देखकर भी वो बहुत ही नाराज हो जाते हैं, उनकी प्रेरणा खत्म हो जाती है। तो जगह जगह पर उनका इच्छा था कि ऐसे स्थान प्रकट किए जाएं, भले वो छोटे साइज के हो, मूल साइज के, लेकिन वहां पर श्री वृंदावन धाम के अलग जगह प्रकट हो जाएं और लोगों को वो दिव्य अनुभूतियां प्राप्त कर सकते हैं, दे सकते हैं, प्राप्त करा सकते हैं, ऐसी उनकी इच्छा थी। उस इच्छा को पकड़ के यहां पर अभी वृंदावन धाम प्रकट हो रहा है। अभी वापस श्रद्धा का विषय आता है कि आपको श्रद्धा है, क्योंकि मैंने पहले कहा था कि भगवान ने इस दुनिया के उद्धार का ठेका उनके शुद्ध भक्तों को दिया है, और शुद्ध भक्त जो इच्छा प्रकट करते हैं वो उनके होते हुए या ना होते हुए प्रकट होती रहती है। फिर प्रभुपाद जी जब गए तभी उनका संस्था में 108 मंदिर थे, आज 605 मंदिर हैं, 5 गुना प्रचार हुआ है उनके जाने के बाद। ये एक सच्चे आचार्य का प्रमाण है। कितने संप्रदाय के लोग, जैसे उड़पी के संप्रदाय के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि ये बड़ा अद्भुत चीज है, एक तो हमारे संप्रदाय के लोग समुद्र पार करके बाहर जाते नहीं, बाहर जाते हैं उनको भ्रष्ट माना जाता है, और अगर हम लोग भारत में भी घूमते हैं तो हमारे इर्द गिर्द 1 मीटर तक गैप रहता है और उसके आसपास भक्त रहते हैं रिंगण बनाकर, और उसमें से हम चलते हैं ताकि माया का प्रभाव हम पर नहीं हो जाए, इतना हमको संभाला जाता है साधु संन्यासियों को। 1 मीटर तक कोई रहता नहीं है, उसके बाद भक्तों का एक सर्कल रहता है, उसमें हम चलते हैं और दिन रात भक्त हमारे साथ में रहते हैं। ऐसा होने पर भी हमारे संन्यासियों का पतन होता है, ऐसे उन्होंने बताया था। और प्रभुपाद जी ऐसे एक महान आचार्य हैं जो अकेले बिना 1 मीटर के सर्कल के विदेश गए, वो 1 साल तक तड़पते रहे भारी दृष्टि से एक तरह से, और अकेले होने पर से उन पर वहां की माया का प्रभाव नहीं हुआ, उन्होंने अपना प्रभाव उनको दिया, क्योंकि वो हृदय में वृंदावन लेकर वहां गए थे, कृष्ण का प्रेम जो है वृंदावन का सार है वो लेकर गए थे। उसका परिणाम लोगों पर देर से हुआ लेकिन जरूर हुआ, लेकिन वहां का प्रभाव इन पर नहीं हुआ। इन्होंने पैंट शर्ट पहना नहीं शुरू किया, इन्होंने चमचे काटे से खाना नहीं शुरू किया, उनको कहा गया था कि आपको खाना पड़ेगा वहां पर जाके, उन्होंने लोगों को हाथ से खाना सिखाया, उंगलियों से खाना सिखाया, जमीन पर बैठकर, और ये बेडशीट पहनने को भी सिखाया साथ में। हरे कृष्णा। तो शुद्ध भक्त ऐसा होता है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त की इच्छा से कहीं भी धाम प्रकट होता है, जैसे वो तीर्थी तीर्थंति कुर्वाणी, हृदय में धाम को लेकर गए थे, उनके चरणों में धाम का, सभी धामों का सार आश्रय है, जहां जहां गए जहां जहां कदम पड़े वहां पर धाम प्रकट हुआ, वहां वहां धाम की अनुभूतियां, धाम का भाव, धाम का उल्लास, धाम की चेतना प्रकट हुई, उसमें लोग प्रभावित हुए और वो उनके जैसे बने, वे इनके जैसे नहीं बने, वो लोग उनके जैसे बने, इसका प्रमाण है ना, हम देख रहे हैं ना वृंदावन में। देखो हमारे भारत की औरतें पल्लू लेते नहीं है, वो तो पल्लू लेके बड़ा बिंदी लगाकर और बच्चों को भी शेव करके बड़ा शिखा रख के मंदिर में मंगल आरती को आते हैं। भारतीय औरतों को, भारतीय आदमियों को शर्म आना चाहिए उनको देखकर, इतना प्रभाव, सब बाह्य अभ्यंतर सूची ही, हाँ अंदर भी और बाहर भी सब प्रकार से उनका कल्चर ही बदल गया है एक व्यक्ति की चेतना की वजह से। जाने के बाद भी बृहद मृदंग बज रहा है अभी भी। तो इस जगह पर वही वृंदावन धाम प्रकट है, श्रद्धा है तो यहीं पर भी आपको वो अनुभूतियां प्राप्त होगी, जो वृंदावन में जाएगी जाके होंगी वहीं पर प्रकट होगी। वृंदावन के धाम में कहा गया है कि जो एक एक रज का कण है वो इतना कीमती है, इतना ऐश्वर्य संपन्न है कि सारे वैकुंठों के ऐश्वर्य को इकट्ठा करके आप आओगे तो भी उतने द्रव्य से आप वो एक रज का कण खरीद नहीं सकते, इतनी महिमा उस रज के अंदर है। क्योंकि वो एक रज का कण जो वृंदावन का है वो आपको गोलोक धाम की प्राप्ति करा सकता है, और वहां की प्राप्ति होने के पहले गोलोक धाम को यहां प्रकट कर सकता है। तो आप जिस रज में बैठे हो उस रज में भी वही शक्ति है, एक शुद्ध भक्त की इच्छा से और इच्छा बल से वो यहां प्रकट हो रहा है। श्री गिरिराज जी आपके सामने प्रकट है। मुझे एक सुंदर कथा याद आती है कि जब भगवान कुछ काम करते हैं अपने भक्तों के लिए तो बहुत मुश्किलें आसान कर देते हैं। इस कथा को ध्यान से सुनिए आप। एक बार काम्य वन में भगवान और नंद बाबा यशोदा सब लोग लीला कर रहे थे। नंद बाबा ने कहा मैया को अभी हमको बद्रीनाथ जाने का समय हो गया है। तो यशोदा माई ने कहा हाँ मुझे याद है। तो कन्हैया सुन रहे थे, बोले क्यों बाबा जा रहे हो आप? मैं कहा कि जब आप नहीं थे ना तब हमने मन्नत मांगी थी, जब पुत्र होगा संतान होगी तो हम चार धाम की यात्रा करेंगे। अब जो तुम भी हो गए हो और 7 साल के भी हो गए हो, बड़े भी हो गए हो, अभी तो हमने जाना चाहिए। बोले क्यों जाना है? वहाँ पर हम जाएंगे, बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे, गंगोत्री जमुनोत्री भी स्नान करेंगे, बहुत पुण्य मिलता है उससे। बोला अच्छा, एक काम करो आप आंख बंद कर लो। तो सब लोगों ने आंखें बंद कर ली। अभी कैसा है ना, कभी कभी अजीब लगता है बहुत। अरे क्या, बच्चा जो बोलेगा वो करते हैं लोग। हे इसकी पूजा मत करो, वो पर्वत की पूजा करो। हाँ मान लिया उन्होंने, अजीब लोग हैं ये लोग। जो बच्चे को सिखाना चाहिए कैसे करना है क्या नहीं करना है, संस्कार देने चाहिए, वो कुछ अजीब सी बात बोलता है तो उसको मान लेते हैं लोग। तो अभी बोले आंख बंद कर लो, तो बंद कर लिया आंख। अभी बोले खोलो, तो खोल दिया। तो क्या देखते हैं खोल के? बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, नर नारायण पर्वत सब प्रकट हो गए उनके सामने। बड़े प्रसन्न हो गए सब ब्रजवासी लोग, फटाफट कपड़े निकाल के स्नान कर लिया सब जगह पे। लेकिन विशेष बात समझने की यह है कि वो पर्वत बहुत छोटे से थे, ठंड भी नहीं थी और बर्फ भी नहीं था, और केदारनाथ तो इतना, अभी केदारनाथ जाएंगे ना आप तो आपको बहुत दूर तो जाना पड़ेगा, 24 आवर्स प्लस 24 आवर्स 48 आवर्स प्रवास करेंगे आप तो आप केदारनाथ के नीचे पहुंचेंगे। फिर आपको 14 किलोमीटर पहाड़ी इलाके में चढ़ना है, या तो घोड़ी पर या खुद पैदल। फिर हवा का दाब बहुत कम है, हाँ सांस फूलेगा आपका, तकलीफ होगी आपको, थक जाएंगे आप। इतना सारा तपस्या करने के बाद में बर्फ भी गिरेगा बीच में, ठंड लगेगी आपको, उसके बाद में थक के आप तीसरे दिन केदारनाथ पहुंचोगे और दर्शन करोगे। बोले हाय हाय, लगता है वापस कभी आ नहीं पाऊंगा यहाँ पर। ऐसा हमारा कितने बार अनुभव हुआ, हर बार यही था कि नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट कम। वही केदारनाथ 15 मिनट में आप ऊपर चढ़ सकते हो और दर्शन कर सकते हो। उसका मतलब जो तपस्या बाहर के धाम में जाने में है उसको भगवान बड़ी आसानी से दूर करते हैं और आसान करके अपने धाम में प्रकट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने एक बार कहा, लर्दाने ने कहा कि वो काम्य वन की लीला है कि हमने तो सुना है कि तुम पिछले जन्म में राम थे और ये भैया दाऊ जी लक्ष्मण थे। तो कृष्ण कहते कौन कहा आपको, मैं तो एक सामान्य ग्वाल बाल हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं हूं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं देखो, आप ज्यादा जिद मत करना, नाटक मत करना, हमको वो रूप देखना है, अगर नहीं दिखाओगे तो बात नहीं करेंगे आपसे। तो भगवान डर जाते हैं। तो बोले भगवान है वो डरते कैसे? भगवान प्रेम करने वालों से डरते हैं, जिनसे साक्षात भय भी भयभीत होता है, मृत्यु भी कांपता है उनके सामने,
सब दुनिया को थर्राते हैं, वो पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है। ऐसे भगवान एक सीधे साधे गंवार औरतों के कुछ कहने से डर जाते हैं। ग्वाल बाल कहेंगे कि आपको कल खेल में नहीं लेंगे, क्योंकि आप हारते हुए भाग रहे हो, बाबा का नाम लेके भाग रहे हो, कल आपको खेलने में नहीं लेंगे आपको। तो वापस आ जाते डर के, बाप रे कल मुझे खेलने को नहीं लेंगे, इससे बड़ी भयंकर बात क्या हो सकती है। अब बोले क्या पागल लड़का है, इतना क्या हुआ, बड़ी बात है, जाओ पापा मिठाई खिलाने, जाओ पापा बुला रहे हैं। नहीं, उनके लिए बृहद भागवतम में लिखा है कि उनकी धमकी सबसे बड़ी भयंकर है भगवान के लिए, अगर वो खेल में नहीं लेंगे। अगर गोपियां कहेंगे कि आप बात नहीं करेंगे आपसे, तो भगवान को सबसे अति दुख होता है। अरे सब वैकुंठ का ऐश्वर्य छोड़कर आए वो उनकी छाछ चुराने के लिए और मक्खन खाने के लिए, इतना प्रेम के भूखे हैं वो। और वो प्रेम करने वाले लोग जब कुछ कहते हैं तो उससे बड़ी धमकी उनके लिए और कुछ नहीं है। तो बोले ठीक है ठीक है ठीक है, आग बंद करो, सब लोग आग बंद करो, सब लोग आग बंद करो, अभी आग खोलो। तो क्या देखते हैं, प्रभु कृष्ण जो है वो प्रभु रामचंद्र बने हुए, धनुष धारण किए हुए, ब्लू रंग के थे वो हरे रंग के हो गए, और दाऊ जी भैया छोटे भाई बनकर लक्ष्य धारण करके खड़े हैं, लक्ष्य धनुष। अरे ग्वाल वाल कहाँ गए, अरे सब बंदर बन गए, अब कूद रहे हैं। और राम भगवान जो अभी कृष्ण है, राम बनकर शिवलिंग का स्थापना करते हैं, रामेश्वर महादेव उनका पूजन करते हैं। फिर आगे चलते हैं, अचानक सागर जैसा जलाशय उत्पन्न होता है सबकी आंखों के सामने। एक जगह पर गोपियां बैठी हैं प्रेक्षक वृंद के रूप में, देख रहे हैं क्या हो रहा है। और अचानक वो पत्थर पूरा उठाकर बंदर सब डालते हैं पानी के बीच में, और कुछ ही मिनटों में सेतु बन जाता है। किसी को आइडिया है क्या वो सेतु बंद में टाइम कितना लगा था बनाने में? एनीबडी नोस? काफी दिन लगे थे, काफी दिन, लेकिन बहुत जल्दी जल्दी बनाया था। यहां पर कुछ मिनटों में सेतु बंधन हुआ और सब लोग बंदर राम लक्ष्मण के पीछे चढ़कर चले गए। और जब एंड में पहुंचे तो वहां से हा 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 दशानंद पैदा हो गया रावण। फिर राम ने धनुष लिया और बाण मारा उसके वक्षस्थल पर, उसके नाभि पर, तो वो राम करके गिर गया और जल्लोष हो गया। सीता को लेकर वाप राम भगवान लौट कर आए, फिर आवाज आई आकाश से आंख बंद करो, तो आंख बंद किया सब लोगों ने, फिर आंख खोलो, तो आंख खोल दिया, तो प्रभु रामचंद्र अभी कृष्ण थे और लक्ष्मण भैया दाऊ जी भैया थे बलराम जी, सब बंदर लोग अभी ग्वाल बाल बन गए। लेकिन समुद्र वैसा ही रह गया, सेतु भी वैसा ही रह गया, रामेश्वर भी वैसा रह गया, लंका भी वैसे रह गई। लेकिन आप देखेंगे बहुत कम डिस्टेंस है वहां पर। कहने का तात्पर्य क्या है कि संक्षिप्त रूप में भी भगवान उतनी ही कृपा प्रकट करते हैं, बल्कि ज्यादा कृपा प्रकट करते हैं। अभी गया ब्रजवासियों ने इच्छा किया था कि अरे गया बहुत दूर है भगवान, गया भी हमको दिखा दो जरा यहां पर। तो भगवान ने काम में मन में गया जी प्रकट किया एक कुंड के रूप में। अभी सुनो आप, वास्तविक गया में जाएंगे और वहां पर श्राद्ध करेंगे तो उस जीव को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, और ब्रज की गया में जाके श्राद्ध करेंगे मोक्ष तो प्राप्त होगा ही सर, चिंता मत करना, कृष्ण प्रेम भी प्राप्त होगा और गौलोक धाम भी प्राप्त होगा। बद्रीनाथ में जाओगे तो मोक्ष प्राप्त होगा, आदि बद्री आदि केदार काम्य वन में जाओगे वहां के प्रकट हुए कद्री बेदार में, तो आपको वहां पर मोक्ष तो मिलेगा ही, कृष्ण प्रेम भी मिलेगा। बाहर के जमुना जमुनोत्री से आप जाएंगे तो सब जमुनोत्री का जितना जमुना जी का प्रवाह है, जहां जहां जाओगे पवित्र क्षेत्र है सब जगह पर, सब जगह आपके पाप की मुक्ति हो जाएगी। वैसे ही जैसे ही जमुना जी वृंदावन में प्रवेश करेगी ब्रज भूमि में, तो न केवल पाप नष्ट होंगे पुण्य भी नष्ट होंगे, और पाप पुण्य के साथ साथ नष्ट होने के साथ आपको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। केवल ब्रज की जमुना को निहारने से आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो ब्रज भूमि एक विशेष शक्ति है जो सामान्य वस्तु को भी शक्तिमान बना देती है। जैसे गोपियों ने कहा था जब भगवान 112 साल के ऊपर तक उधर बाहर रहे ना ब्रज के, और दंत वक्रम को मारने के बहाने ब्रज में दोबारा आए एंड में एकदम, तब गोपियां और ब्रजवासी एकदम ऐसे मरने जैसे हो गए थे, एकदम मरणासन्न हो गए थे, लास्ट स्टेज ऑफ विरह। तब वो मौका पकड़ के दंत वक्र का बहाने से ब्रज में भगवान आए और कुछ देर भगवान ब्रज में रहे, तो कोशी में एक बार उसी समय कोशी में थे भगवान अपने गोपियों के साथ। तो गोपियों ने कहा, अरे हमने सुना था कि हमारी याद में आप बहुत रोते थे। तो हाँ रोता तो था मैं, और हमने ये भी सुना है कि आपके रोने से वहां पर एक नदी पैदा हुई है गोमती नाम की। अरे हमने सुना है, ये बात सही है, तो हमको उसका दर्शन करा दो। तो भगवान ने द्वारका की गोमती नदी का प्रकट्य कोसी में किया गोमती कुंड के रूप में। फिर कहा कि हमने सुना था कि आपने तो समुद्र के अंदर नगरी बना ली। हाँ ये भी बात सही है, हमारे यहाँ तो समुद्र तो है नहीं, हमको उसके भी दर्शन करा दो जिसमें आपने नगरी बना दिया था। तो भगवान ने वहां पर रत्नाकर कुंड प्रकट किया, समुद्र को प्रकट किया। तो द्वारका के समुद्र और द्वारका की गोमती नदी का दर्शन करने से जो लाभ नहीं होता, उससे अनंत गुना लाभ ब्रज के कोशी में गोमती कुंड और रत्नाकर कुंड का दर्शन करने से होता है। वैसे ही हो सकता है आपके आंखों के सामने आपका जो दिमाग है, शहरी दिमाग को लगता होगा कि ये तो बहुत छोटा छोटा है, तो बहुत पास पास में है, तो 1/3 एरिया का बनाया गया है। ऐसा आप सोचेंगे तो सोचते ही रह जाओगे। लेकिन अगर आप शुद्ध भक्त के बल को समझते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका सारा दिव्य लाभ आपको यहीं पर भी होगा, हो सकता है, अगर हमारी चेतना सही जगह पर है। तो इस वृंदावन का यहाँ पर जो प्रकट हुआ है, उसका दर्शन करने के पहले चेतना को ठीक कर लो, चेतना का सेटिंग कर लो। अपने मोबाइल तो खरीद लिया आपने, बहुत महंगा वाला, 56,000 वाला। पहले क्या होता है, सेटिंग। इतना बड़ा मोबाइल लेके क्या लाभ है आपका, यूजलेस है वो आपके लिए। पूरा सेटिंग करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, सारे प्रोग्राम सॉफ्टवेयर उतारना पड़ता है, और उसका करने का भी कुछ लाभ नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है, सिम कार्ड डालना पड़ता है, फिर भी कुछ लाभ नहीं उसका। उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, जो कंपनी है ना अथॉरिटी, उसने एक बार आपको एक्टिवेट कर दिया, फिर सारा गौरव प्रकट होता है उस मोबाइल से। कोई बंदर बोल रहा है, आप बोलोगे तो बंदर भी बोलेगा उसके अंदर, पता है आपको। ऐसा भी एक ऐप आया उसके अंदर, तो बंदर खड़ा रहेगा, आप बोलेंगे हरी बोल तो भी हरी बोल बोलेगा। ये जो आपके दृष्टि से जो गौरव है उस मोबाइल का, दुनिया को दिखाते देखो 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 इसके अंदर क्या क्या है, वो सारा गौरव तब प्रकट होगा जब वो कंपनी सर्विस प्रोवाइडर उसको एक्टिवेट करेगी, और वो एक्टिवेट करने के बाद भी तब प्रकट होगा जब वो सारे अपडेटिंग क्या बोलते हैं उसको, डाउनलोडिंग अपडेट होगा ना, तभी होगा सब कुछ। उसी तरह से अगर आपका अपडेट नहीं हुआ है तो आपके लिए केवल मिट्टी है और ये पुराने आम के पेड़ है जो किसी ने लगाए थे कई साल पहले, बस और कुछ नहीं है। अगर आपका चेतना का सेटिंग हो गया है और उसको गुरु जी की और संतों की और भक्तों की कृपा प्राप्त है, तो हर जगह पर वृंदावन की नित्य लीला आपके लिए प्रकट है। कुछ आपके नज़रों में प्रकट हो रही है, कुछ आपकी चेतना में प्रकट होगी, और कुछ लीलाएं और कुछ धाम आपके नज़रों में भी कुछ समय के बाद प्रकट होंगे। ये आज भी सत्य है, ऐसे कई ब्रज की जगह है जहां हम आज तक गए नहीं, वो तो वही है, 5,000 साल से वहीं पर ब्रज है वो। हम कई बार 30 साल से जा रहे हैं फिर भी वहां पर नहीं जा सके, हर बार कहीं एक नई जगह का दर्शन होता है, और पता नहीं अगले 10 साल में और कितने स्थान हमको दर्शन मिलेगा, नई लीला पता चलेगी। ये तो मथुरा के वृंदावन में भी सत्य है, आज भी सत्य है, और पता नहीं इस जीवन में सारे स्थान का सारे लीला समझ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस साल ज्यादा प्रॉब्लम। क्योंकि मैंने क्या कहा था, धाम एक चलायमान व्यक्तित्व है, जब उसकी मर्जी होगी तब आपको दर्शन होगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं होगा। हम उसकी मर्जी कब होगी, जब संतों की कृपा आप पर होगी और आपकी चेतना का सेटिंग ठीक होगा, तो उसकी मर्जी बनेगी और वो एक एक चीज आपको सही टाइम पे जब आप ग्रहण कर सकते हो तो आपको देते रहेगा, ऐसा है वो। जब बालक पैदा होगा तो आप उसको लड़की लेके आओगे, बेटा ये लड़की जब बड़ी होगी ना आपकी शादी होगी इसके साथ में, ऐसा करोगे क्या आप, नहीं। वो जब उपवर होगा, उस समय का आएगा, समय आएगा, पढ़ाई लिखाई हो जाएगा, जवान हो जाएगा, तब उसकी शादी की बातें होने लगेंगी, मतलब योग्य समय पर योग्य चीजें प्रकट होने लगेंगी। वैसे ही जैसी हमारी चेतना डेवलप होगी, विकास होगा उसका, वैसे ये आपको जो लग रहा है अच्छा गांव का सीन है, वो एक दिव्य धाम के रूप में आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो भाई और बहनों, आपको मेरी विनती है, समय बीतता जा रहा है, तो ये भगवान की दया से अगर आपके पास 2 घंटे हैं तो 2 घंटे में भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं, ऐसा दिव्य वृंदावन धाम यहाँ प्रकट है। अभी हम लोग बहुत साल से वहाँ पर जा रहे हैं, तो हमारे पास भी कुछ थोड़ा थोड़ा मोटा सा एक्सपीरियंस है उसका, कि धाम में जाने से क्या क्या अनुभव हुआ है आज तक। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि वही अनुभव यहाँ प्राप्त है, वही दिव्य अनुभव यहाँ पर भी प्रकट है। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं और जो आसपास रहते हैं और बाहर से आते हैं, और जो कभी मुंबई से आते हैं, गांव से आते हैं, और कुछ लोग सैकड़ों लोग यहाँ पर भी रहते हैं, उनको भी यही भाव रखना चाहिए मन में कि हम दिव्य वृंदावन में रह रहे हैं, जहाँ कृष्ण नित्य लीला करते हैं, नित्य लीला कर रहे हैं, और उसी के आसपास और इर्द गिर्द हम रह रहे हैं। जैसे वृंदावन के लता पता पर राधा रानी का नाम और राधा रानी का उच्चारण होता है, वैसे यहाँ पर भी होता है। लेकिन अपनी भौतिक बुद्धि की भौतिक जो तकनीक है उसमें उसको मिलाकर उसको दूषित मत करना। ये एक दिव्य वस्तु है, दिव्य वस्तु को दिव्य चेतना से ही ग्रहण करना चाहिए। दिव्य वस्तु को भौतिक चेतना से ग्रहण नहीं कर सकते। हाउ कैन यू अंडरस्टैंड डिवाइन मटीरियल, डिवाइन डिवाइन थिंग्स विद मटीरियल कॉन्शियसनेस, मटीरियल टेक्निक्स, नॉट पॉसिबल। उसी तरह से ये जो धाम आपके सामने प्रकट हो रहा है, हमारे लिए बहुत ही बड़ी कृपा है, हमारे ऊपर अति दिव्य कृपा है। वही अनुभव एक शुद्ध भक्त की कृपा से, उसी पावर से आपके सामने प्रकट है। वापस हमारा जो प्रवचन शुरू हुआ था उसमें शुरुआत का बात था श्रद्धा की और भाव की। अगर उसकी कमी है तो आपके लिए सब कुछ बेकार है। लेकिन जिसके पास श्रद्धा और भाव भर भर के है, उसके लिए उसके भाग्य का क्या वर्णन करें। जैसे प्रवेश करेगा दिल झूम उठेगा, आनंद से झूम उठेगा, लहराएगा आनंद के लहरों पर। तो यही जगह है वो जहां पर ठाकुर जी ने गोवर्धन उठाया था, यही जगह है भगवान ने यहाँ पर अष्टासुर को मारा था, यही जगह है जहां पर मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के सामने प्रकट हुए थे, यही वो जमुना है जिसमें भगवान गिरे थे जन्म होने के बाद, यही केशी घाट है जहां पर केशी का भगवान ने वध किया था। अरे यही केशी घाट है जहां पर भगवान त्रिभंग रूप में खड़े हो जाते हैं और मुरली बजाते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं, यहीं खड़े होकर कहते हैं, मत जाना वहां पर। अगर आपके दुनिया में दुनियादारी की इच्छाएं मन में है, वहां पर मत जाना, छीन लेगा सारी इच्छाओं को आपकी। सावधान, अगर मन में इच्छाएं हैं और बनाए रखने की भी इच्छा है इसको, यू वांट टू मेंटेन दोस डिजायर्स, डोंट गो टू केशी घाट, ही स्टैंडिंग देयर, वो सारा आपकी इच्छाओं को छीन के आपको भिखारी बना देगा। अधिकारी बनाने के बाद में दिल भर देगा आपका प्रेम से और आपको अपना बना लेगा। है हिम्मत तो जाओ वहां पर। कभी कभी भगवान का बनने को डर लगता है, प्रभु कैसे होगा, क्या होगा, वी डोंट नो, वी आर एंटरिंग इन अननोन जोन। लेकिन डरो मत, ये अननोन जोन वो काली काली गुफा नहीं है, काला गहरा कुआं नहीं है जहां पर आपका सर पटके फूट जाएगा, वो नहीं है। वो अंधे कुएं में तो हम बड़े बिंदास कूदते हैं, है ना, ये समझ करके यहाँ पर फूल और फल मिलेंगे और आनंद ही आनंद मिलेगा, और बिना जल के गहरे काले कुएं में कितना आराम से कूदते हैं हम लोग, कितना विश्वास के साथ कूदते हैं। ये तो ऐसी जगह है, संत लोग इतना सुंदर वर्णन करते हैं उनका, यम श्याम सुंदरम, हाँ क्या है वो, अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामी। ये ऐसी चेतन भूमि है ये, तो मैं तो कहूंगा डरो मत, एकदम बिंदास जाओ और बोलो उनको, है बचा कुचा तो वो भी साफ कर दो। हमको पता है उतना निकाल ही दो, जो हमको पता नहीं उसको भी खींच लो और हमें अपना बना लो। हम तो अपना आपका बनना चाहते हैं, लेकिन हम आप हमें अपना बना लो, एक बार अपना रा बोली चरणों में रख लो, ऐसा ही दिव्य स्थान है। और बाकी जो मथुरा वृंदावन में जो पंडागिरी और चीटिंग वीटिंग है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, तो आपको वो प्योर अनुभव मिलने की संभावना ज़्यादा है। सारा खेल चेतना और भावना का है, बस उसको बटोरना है। और तो उसके लिए क्या करना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र का एकाग्र चित्त होकर जप करोगे, आपकी चेतना की सेटिंग बन जाएगी। आप भगवान को पुकारना, केवल जप मत करना, जप के समय भगवान को पुकारना, उनकी कृपा को याद करना। मैं आपको यकीन से बताना चाहता हूँ कि वृषभानु महाराज की प्रिय कन्या अति सुकुमारी श्री राधा रानी यहाँ निवास करती है। नंद महाराज के पुत्र ब्रजेंद्र सोनू नंद कुमार श्री कृष्ण भगवान कन्हैया लाल श्याम सुंदर जी यहाँ निवास करते हैं, नित्य रूप से यहाँ व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं और प्रेम की लीला करते हैं। यही वो जगह है जहां पर आप बैठे हो। संतों की कृपा से ये सत्य है, हमको ये विश्वास रखना चाहिए। जैसे हमको कहा जाता है कि आपके जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन बंसीवट के नीचे राधा और श्याम सुंदर जी रत्न सिंहासन पर बैठे हैं, श्याम सुंदर के बाई ओर राधा रानी विराजमान हैं और सखियां उनकी सेवा कर रही हैं और श्याम सुंदर जी बंसी बजा रहे हैं। ये सत्य कभी मिटता नहीं है, ये सत्य यहाँ पर भी सत्य है। यहाँ पर थोड़ी आगे गोपीनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पर बंसीवट है, वहाँ पर श्याम सुंदर जी आज भी बंसी बजा रहे हैं। आप प्रार्थना कीजिए, जैसे वहाँ पर जाएंगे तो भी आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, मथुरा वृंदावन में शायद यहाँ पर भी सुनाई नहीं पड़ेगा। दोनों जगह एक ही बात बताई गई है, प्रार्थना कीजिए, चेतना का सेटिंग बदलिए, फिर सुनाई पड़ेगा एक दिन। तो जो भाव हमको जरूरी है वो विकास करना उसकी आवश्यकता है। जब उसका विकास आप करेंगे, संतों के द्वारा दिया गया फॉर्मूला हमारे जीवन में उतारेंगे, उसको अपनाएंगे, तो कण कण में आपके लिए वृंदावन प्रकट होगा। जैसे गोपियां कैसे थी, इतनी कृष्णमय हो गई थी, उनको डगर डगर पे शाम, पाती पाती पे शाम, इत शाम उत शाम, जमुना तटी शाम, घगरिया में शाम, सब जगह शाम ही शाम, भोजन में शाम, पेय में शाम, बाल सवार रहे बालों में भी शाम, आईना देखा खुद नहीं दिख रहे श्याम सुंदर को ही आईने में देख रहे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनकी चेतना में शाम है। इस चश्मा को आपने अगर काला कर दिया तो आप जहां देखेंगे वहां आपको काला नजर आएगा, बोले ये क्या बात हुई, सब काला हो गया। बोले भैया तुम्हारा चश्मा काला है। तो नेक्स्ट जगह हरा पहन लिया तो सब हरा ही दिखाई पड़ेगा आपको, आपकी गोरी बीवी भी हरी दिखेगी आपको। बोले ऐसा कैसे हो गया, प्रभु जी चश्मा उतारिए, फिर पता चलेगा कि रहस्य की बात क्या है। वैसे उनकी आत्मा पर श्याम सुंदर का चश्मा चढ़ गया था, इसलिए उनको हर वस्तु में श्याम सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। ये परम स्थिति है। तो आपको फिर वृंदावन जाने की भी जरूरत नहीं है, आपको दिल्ली में भी दिखाई पड़ेगा, मद्रास में भी दिखाई पड़ेगा और मुंबई में भी दिखाई पड़ेगा, लेकिन तब तक तो आपको गोवर्धन इको विलेज जाना होगा, वो तैयारी यहाँ पर होगी। वैसे तो कण कण में शाम है, तो वृंदावन जाने की जरूरत क्या है फिर? लेकिन वो कण कण में शाम हमको दिखते नहीं ना, इसलिए जहाँ दिखते हैं समझ सकते हैं वहाँ पर हम जाते हैं। वो तो कण कण में शाम है, अभी मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? क्योंकि मंदिर में हमको लगता है कि है भाई यहाँ पर वो एक शेप बना के रखा है, उसमें वो विराजमान है और कुछ कुछ अनुभूति होने लगती है, अगर इतनी श्रद्धा जोरदार नहीं है तर भी होती है। तो मंदिर में आकर फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उनको देखने की, फिर धीरे धीरे वो हमको मंदिर से मूर्ति से निकलकर भक्तों के मन में भी दिखाई पड़ते हैं, भक्तों के अंदर भी, रही इनके अंदर भी श्याम सुंदर हैं। और उसके आगे जाकर जो आम आदमी है, जो भक्ति भी नहीं है, उनके अंदर भी श्याम सुंदर दिखाई पड़ते हैं। और उसके आदमी जो जानवर है, पंछी है, कीटक है और जानवर सब कुछ चीज जितने हैं उनमें भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये क्या हुआ, ये आत्मा का विकास हो रहा है, धीरे धीरे आत्मा की चेतना का विकास हो रहा है, विस्तृत हो रहा है वो, इस डेवलपिंग इन एक्सपांशन। तो आपको समझ में आ रहा है कि वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है। सत्य तो पहले से यही था कि हर कण में और हर जीव में कृष्ण है और श्याम सुंदर है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा था उस समय, हम केवल मूर्ति में देख रहे थे उनको, फिर भक्तों में देखा, फिर आम आदमी में देखा, फिर जानवर में देखा, फिर पंछी में देखा, फिर निर्जीव अचेतन वस्तु में भी देखा उनको। तो स्थिति में कुछ फर्क नहीं पड़ा, फर्क केवल चेतना में पड़ा। और आज भी यही सत्य है कि सब कुछ जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य ही है, लेकिन हमको एक हद तक उस सत्य की अनुभूति हुई है, कुछ हद तक नहीं हुई है। जब चेतना का विकास होगा तो वो भी सत्य हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। और ये जीवन उसी के लिए दिया गया है, हाँ, बहुत पैसा कमाने के लिए नहीं दिया गया है, बहुत प्रसिद्ध होने के लिए नहीं दिया गया है, बहुत ऐशो आराम के लिए नहीं दिया गया है, वी आर प्रोग्रेसिंग इसके लिए नहीं दिया गया है। ये पूरा जीवन जो सीमित समय का जीवन दिया है, इसी अनुभूति को प्राप्त करने का भाग्य इस शरीर में है, इसलिए दिया गया है। ताकि इसी एक ही जीवन में, एक ही योनि में, एक ही जन्म में हम उस विकसित चेतना का पूरा परिणाम और पूरा अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए दिया है। कभी हमको भूलना नहीं चाहिए व्हाई वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड, ओनली फॉर वन पर्पस, टू रियलाइज श्री कृष्णा एंड टू लव हिम एंड टू सर्व हिम। इसलिए संत लोग अपनी इच्छा से, अपने प्रयास से ऐसा दिव्य धाम बनाते हैं ताकि हम जैसे पापी पतित लोग यहां पर आकर उसकी दिव्यता का अनुभव कर सके, उस दिव्यता को प्रकट करते हैं अपने तपोबल से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, अपनी शुद्ध भक्ति से, अपने शुद्ध भाव से, प्रामाणिक भाव से, सरल हृदय से, सारे बल से वो यहाँ पर वो चेतना प्रकट करते हैं, पेड़ ने प्रकट करते हैं, वो चेतना प्रकट करते हैं। वो जिस चेतना के क्षेत्र में जब हम लोग आएंगे तो हमारी चेतना प्रभावित होगी, उसकी ओर आकर्षित होगी और वो अनुभूतियाँ हमको होने लगेंगी। क्यों प्रभुपाद ने ऐसा इच्छा किया? एक ही कारण के लिए इच्छा प्रकट किया उन्होंने कि ऐसे धाम प्रकट होने चाहिए ताकि सामान्य व्यक्ति को कम प्रयास में धाम की अनुभूति प्राप्त हो, धाम से प्रेम, आकर्षण और आसक्ति प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने ऐसा इच्छा प्रकट किया। केवल इच्छा प्रकट करके बैठे नहीं, चिंतन करते रहे कैसे करना है, कैसे करना है, मेहनत करते रहे, तब जाकर एक शुद्ध भक्त के प्रयास से सारी चीज़ें धीरे धीरे क्यों ना हो प्रकट हो रही है। मेरे विचार से तो बहुत फास्ट प्रकट हो रही है, एक्चुअली स्पीकिंग विद इन नो टाइम, हाँ, इट इज मैनिफेस्टेड इन फ्रंट ऑफ आवर आइज। तो आइए सब लोग हम इस दिव्य धाम का लाभ लें। हाँ, यहाँ सब तो देवालय प्रकट हैं, यहाँ पर मदन मोहन जी प्रकट हैं सनातन गोस्वामी के, उनकी समाधि प्रकट है, जमुना जी बह रही है, केशी घाट प्रकट है जहाँ पर केशी का वध भगवान ने किया था, जहाँ भगवान बंसरी बजा रहे हैं, फिर गोविंद देव का मंदिर प्रकट है बहुत सुंदर, जहाँ पर रूप गोस्वामी को योग पीठ पर स्वप्न आया था कि एक गाय आकर वहाँ दूध देती है और थन खाली कर देती है, तो ग्वाला आकर मारना चाहता था उसको, तो भगवान ने स्वप्न दिया कि इसी के नीचे मैं विराजमान हूँ। तो रूप गोस्वामी ने ब्रजवासियों की सहायता से गोविंद जी को प्रकट किया, वहाँ स्थापन किया योगपीठ पर, कई दिन तक पेड़ के नीचे रहे योगपीठ पर। उसके बाद मान सिंह आए और मान सिंह ने, उनके शिष्य थे वो, उन्होंने इनको बताया कुछ सेवा दीजिए, तो उन्होंने कहा मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे गोविंद जी ठाकुर जी के लिए आप मंदिर बनाइए। तो मान सिंह ने 7 मंजिल का सुंदर मंदिर बनाया, हर एक खंभे पर लीलाओं का डायरामा प्रकट किया उन्होंने, वो मंदिर आपके सामने विराजमान है। उसके आगे गोपीनाथ जी का मंदिर है, हमारे मधु पंडित महाशय ऐसे मदहोश होकर ब्रज में घूमते थे श्याम सुंदर को पुकारते हुए, वन वन में भटकते थे आंखों से आंसू लेकर, एक दिन जमुना किनारे पुकारते पुकारते गए और भाव में जमुना में गिर गए। जमुना में गिरते ही गोपीनाथ जी जमुना में अंदर प्रकट हो गए और उन्होंने डूबते हुए मधु पंडित महाशय को पकड़ा और खुद बाहर लेके आए, और फिर मधु पंडित होश में आए तो मधु पंडित इतने खुश हो गए गोपीनाथ को देखकर, उन्होंने कहा गोपीनाथ जी ने कहा क्या करूं तेरे लिए बताओ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही खड़े रहो और दर्शन देते रहो। तो वहां पर गोपीनाथ जी का विग्रह स्थापन किया गया मधु पंडित द्वारा और राधा गोपीनाथ जी का मंदिर प्रकट हो गया। फिर दामोदर जी जहाँ पर जीव गोस्वामी जी का मंदिर है, उस मंदिर में रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी, सारे गोस्वामी जी इकट्ठा होकर कैसे प्रचार किया जाए उसकी चर्चा करते, वो जगह है गोपीनाथ जी दामोदर जी के मंदिर में, इस तरफ है ना, इस तरफ है वो स्थली है जहाँ पर सारे गोस्वामी एकत्र होकर चर्चा करते थे विश्व के कल्याण के लिए। वहाँ पर तमाल का वृक्ष है, वहाँ पर जीव गोस्वामी की पादस्थ धूली धोने की स्थली है। और जो विग्रह है दामोदर जी का, ऐसा हुआ जब गोविंद जी का मंदिर बन रहा था तो रूप गोस्वामी शिफ्ट हो गए जीव गोस्वामी के मंदिर में भजन करने के लिए, तो उनकी भजन कुटी जीव गोस्वामी के मंदिर में है। और तो रूप गोस्वामी के भतीजे थे जीव गोस्वामी, तो उनकी इच्छा हुई कि मेरे भतीजे को कुछ दिव्य गिफ्ट देना चाहिए। इसके इच्छा के प्रभाव से राधा रानी स्वप्न में आई रूप गोस्वामी के, और स्वप्न में रूप गोस्वामी को सिखाया कैसे पत्थर की मूर्ति बनती है, और राधा रानी के प्रत्यक्ष निर्देश के अनुसार रूप गोस्वामी मूर्तिकार न होते हुए भी उन्होंने पत्थर से मूर्ति बनवाकर अपने भतीजे को प्रेजेंट दे दी, और वो है राधा दामोदर भगवान। और उसी मंदिर में
धीरे धीरे भगवान की इच्छा से फिर राधा वृंदावन चंद्र प्रकट होंगे, राधा माधव प्रकट होंगे, राधा छैल चकंद प्रकट होंगे, क्योंकि जीव गोस्वामी के समय पर ऐसा एक स्थिति आई थी कि इकोनॉमिक कंडीशन जो थी बहुत मुश्किल हो गई थी उस समय। तो सभी विग्रहों को अलग अलग मंदिरों में विराजमान किया गया था, उनका देखभाल करना इतना आसान नहीं था उस समय। तो उन्होंने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के रूप में सारे आचार्यों के सभी विग्रहों को एक मंदिर में, अपने मंदिर में आकर रखा, और एक साथ उनके एक ही खर्चे में उनकी पूजा अर्चा शुरू किया उन्होंने। इसलिए जीव गोस्वामी के मंदिर में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के राधा वृंदावन चंद्र भी विराजमान है, जयदेव जी गोस्वामी के राधा माधव जी विराजमान है, भूगर्भ गोस्वामी के राधा छैल जगत विराजमान है, और जय और जीव गोस्वामी के मंदिर में सनातन गोस्वामी की बड़ी गिरिराज शिला भी विराजमान है। क्योंकि सनातन गोस्वामी जब अंतर्धान हो गए गोवर्धन में चक्रेश्वर महादेव के पास, तो वो जो शिला की अंतिम अवस्था में चार बार प्रदक्षिणा किया करते थे, जो ठाकुर जी ने स्वयं उनको आकर दी थी, वो जीव गोस्वामी को धरोहर में प्राप्त हुई, तो वो उनके मंदिर में विराजमान है। तो दामोदर जी हो गए, उसके बाद राधा रमण देव, राधा रमण देव गोपाल भट्ट की गोस्वामी के ठाकुर जी हैं, वो साउथ इंडिया के ठाकुर गोस्वामी जी हैं, अकेले सबसे छोटे उम्र के, दक्षिण भारत श्रीरंगम क्षेत्र के थे, और वेंकट भट्ट के पुत्र थे वो। उनके घर में चैतन्य महाप्रभु ने 1510 इस साल में चतुर्मास्य उनके घर पे संपन्न किया, चार महीना वेंकट भट्ट गोपाल भट्ट बालक के रूप में, और वो वेंकट भट्ट के भाई प्रबोधानंद जी और चैतन्य महाप्रभु रात भर कृष्ण की चर्चा करते थे, और दिन भर चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम के मंदिर में प्रांगण में कीर्तन किया करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इतनी आसक्त हुई गोपाल को चैतन्य महाप्रभु के प्रति। जब चतुर्मास समाप्त करके वो जाने लगे तो फिर गोपाल उनके साथ जाने लगे, तो महाप्रभु ने कहा नहीं, आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है, जब माता पिता का शरीर पूरा हो जाएगा तब आप वृंदावन चले जाना। तो उन्होंने बड़े इत्मीनान से महाप्रभु की आज्ञा पालन करके उनके जीवन भर तक माता पिता के वहीं श्रीरंगम में वेंकट भट्ट और माता जी की सेवा किया। जब वो अंतर्धान हो गए तो वृंदावन चले गए, वहाँ पर व्याकुल हो गए, क्योंकि वहाँ पर महाप्रभु नहीं थे, महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में थे, तो व्याकुल होकर वो परेशान होने लगे। तो महाप्रभु जी ने अपना वस्त्र और अपना आसन उनको भेज दिया उनके लिए, थोड़ा विरह कम करने के लिए। फिर भी ये तड़पते रहे, फिर महाप्रभु स्वप्न में आए, उन्होंने कहा कि आप पशुपतिनाथ जाओ, गंडकी नदी जाओ। तो वो पैदल वृंदावन से नेपाल चले गए, और पोखरा के आगे 4 घंटे का गाड़ी का रास्ता है, वो सब चल के वहाँ पर गंडकी नदी गए, वहाँ पर स्नान किया। मैं जाके आया लास्ट ईयर, इतना दूर है वो, बाप रे बाप, इतना पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर पैदल चले गए। जब स्नान करने लगे गंडकी नदी में, तो जो पत्थर आम तौर पे नदी के तल में होते हैं वो ऊपर आ गए, कमंडल में प्रवेश किया, उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने वापस डाल दिया। दूसरी बार कमंडल पानी भरा तो दूसरी बार भी आ गए, फिर वापस डाल दिया, तीसरी बार 12 शिलाएं अंदर आ गई, शालिग्राम शिलाएं। तब आवाज के रूप में भगवान प्रकट होके भगवान ने कहा, मैंने कहा था ना मेरी मुलाकात गंडकी नदी में आपको होगी, ये मैं हूँ स्वयं आपके कमंडल में प्रवेश कर चुका हूँ, मुझे ले चलो वृंदावन में और मेरी सेवा करो। तो इन 12 शालिग्राम शिला के रूप में भगवान स्वयं उनके पास आए और उनको वृंदावन लेके आए और उनकी सेवा करने लगे। एक दिन एक धनी आदमी आया और सभी गोस्वामियों को उन्होंने अपने अपने विग्रह के लिए वो मुरली और मुकट और उनके लहंगा फरिया अलंकार सब बांट दिए सबको। इनके पास भी आए, इनको भी दिया, उन्होंने कहा अरे हमारे ठाकुर जी को तो अंग ही नहीं है, वो तो गोल गोल है, हाँ क्या करें, उनको हाथ नहीं है पैर नहीं है, मैं तो बनाता हूँ उनकी आँखें। नहीं 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 हमने तो लाया आपके लिए, तो लेना ही पड़ेगा। तब इनके मन में इच्छा हुई कि अरे काश मेरे ठाकुर जी के भी अंग होते तो मैं भी उनको पहनाता। नरसिम्हा चतुर्दशी का दिन आया, कथा का पूरा पाठ हुआ, रात को ठाकुर जी को शयन कराया और सो गए। तो रात के नींद में दामोदर नाम की शिला से ठाकुर जी प्रकट हो गए, राधा रमण भगवान की। सुबह उठे देखा तो एक रुमाल ऊपर था, झट से जमुना जी गए स्नान करके भाग के आए, रुमाल उठाया तो देखा कि दामोदर शिला के आगे के हिस्से से पूरे सुंदर विग्रह प्रकट हुए थे, जिनके इतने सुकोमल अंग प्रकट हुए थे, वेरी फाइनली डेवलप्ड लिम्स। सब गोस्वामी भाग भाग के आए, उन्होंने बुलाया उनको,
तो उन्होंने कहा कि इनमें मदन मोहन जी प्रकट है, इनमें गोविंद जी प्रकट है, इनमें गोपीनाथ जी प्रकट है, तो भगवान के चरण कमल, वक्षस्थल और मुख कमल है, वो सारे तीनों विग्रह इस छोटी सी विग्रह में प्रकट है, इसलिए इनका नाम राधा रमन रख देते हैं। रूप गोस्वामी ने इनका नामकरण किया। उनका बड़ा जलसा, बड़ा उत्सव हुआ उसके बाद में स्थापना का। तो वो राधा रमन जी आपके सामने प्रकट है। उसके बाद कौन? उसके बाद श्याम सुंदर जी। हाँ, हमारे श्यामानंद गोस्वामी पहले दुखी कृष्ण नाम के रूप से जानते थे उनको, और वो अंबिका कालना में थे। हृदय चैतन्य महाराज से उनका दीक्षा हुआ, दुखी कृष्णदास। फिर वहां से वो निकले और वृंदावन धाम में आए, और वृंदावन धाम की गलियों को बड़े प्रेम से आंखों से आंसू लेकर बुहारी करते थे, उनकी झाड़ू लगाते थे, और पूरा शरीर उनका धूल से भरता रहता था, ब्रज रज से। एक दिन उनको एक नूपुर मिला साफ करते करते, बड़ा दिव्य था वो, तेज पुंज था। उतने में एक सुंदर युवती आई और पूछा, आपको कहीं पेंजन मिला है क्या, नूपुर मिला है, पायल, पायल मिली है? मिली है। तो किसकी है? तो हमारे स्वामिनी की है। तो दुखी कृष्णदास कहते हैं, आपकी स्वामिनी को ले आओ, फिर हम देंगे। तो वो जाती है और तुरंत कुछ देर बाद एक दिव्य दृश्य प्रकट होता है। ऐसा दिव्य दृश्य जो वहां पर प्रकट नहीं था, लेकिन प्रकट हो जाता है। दिव्य वृंदावन कणी मणि कंचन से भरा हुआ, चमकता हुआ, उसमें दिव्य कल्प वृक्ष है, उसके नीचे राधा रानी बैठी हुई है, अष्ट सखियां बैठी हुई है। वही युवती जो ललिता थी, वही युवती पहुंचती है, कहती है, हमारी स्वामिनी आ गई है, अभी आप आ जाओ, वो नूपुर लेके आ जाओ। तो नूपुर लेके आती है, आता है, आते हैं दुखी कृष्णदास। तो राधा रानी अपने चरण कमल उनके सर पर रखती है, और वो नूपुर जो है उसके पास से प्राप्त करके उसी के कपाल प्रदेश पर दबा देती है और एक परमानेंट तिलक बना देती है, और कहती है, आज से आपका नाम श्यामानंद है। फिर अपने हृदय कंद से सुंदर श्याम सुंदर जी के विग्रह प्रकट करती है और कहती है, ये आपके लिए हैं, आप इनका पूजन कीजिए, और किसी को बताना नहीं कि मैंने क्या किया है। कितना मुश्किल काम है, बताओ आप। हाँ, हमको जरा सी कृपा हुई तो हम ऐलान करना चाहते हैं दुनिया भर को, ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ। और इतनी बड़ी कृपा होने पर भी क्या आदेश है, बताना नहीं है किसको। फिर वो तिलक देखकर सब लोग टीका करने लगे, कैसा है ये, गुरुजी का तिलक छोड़कर और के तिलक लगा रहा है, गुरुजी का नाम दुखी कृष्ण था, ये श्यामानंद पुकार रहा है अपने आप को, बड़ा पदभ्रष्ट हो गया है। ये पदभ्रष्ट होने की जो ख्याति, कुख्याति जो भी कुछ है, वो अंबिका कालना तक पहुंचती है, हृदय चैतन्य के पास। तो वो गुस्सा होते हैं और भाग के वृंदावन में आते हैं और अपने शिष्य को इतना पीटते हैं क्रोधित होकर, तो कैसा पदभ्रष्ट हो गया। बाकी भक्त लोग रोकते, महाराज बस बस, अभी वो मर जाएगा बेचारा। उसी रात में उनके गुरु महाराज हृदय चैतन्य के स्वप्न में राधा रानी आती है और कहती है, डांटती है उनको, मैंने उनको नया नाम दिया है, मैंने तिलक लगाया है, मैंने उनको विग्रह दिए हैं। तो फिर सुबह उठकर हृदय चैतन्य महाराज अपने शिष्य श्यामानंद गोस्वामी के चरणों में गिरकर माफी मांगते हैं कि आप तो मेरे गुरु लग ले, मैं आपका शिष्य गुरु नहीं हूं, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य भी होने की योग्यता नहीं रखता हूं। तो श्यामानंद जी तो रो रहे थे, वो तो ऐसी बात नहीं है, आप ही मेरे गुरु हो। तो वो श्यामानंद जी का मंदिर में श्याम सुंदर जी प्रकट है, तो राधा रानी के हृदय से प्रकट हुए हैं, वही वहां पर विराजमान है राधा श्याम सुंदर जी के मंदिर में। और लास्ट में गोकुलानंद जी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के ठाकुर जी हैं, राधा गोकुलानंद जी, हाँ, उनके ही अंग में राधा रानी है, चोटी के रूप में प्रकट है। उसी मंदिर में वो शिला है जो चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन शिला हर रोज अपने गले में धारण करते थे और अपने प्रेम के अश्रुओं से उसको सिंचित रखते थे हमेशा, दे और ऑलवेज वेट विद द टीयर्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वो जो शिला है वो रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने भेंट दी थी, और भेंट देते वक्त उनकी जो अंगूठा था उसका निशान उस पर आया, भाव से प्रभावित होकर गोवर्धन शिला भी पिघल गई और चैतन्य महाप्रभु का अंगूठे का छाप बनाकर गोस्वामी जी के पास आई। वो राधा कुंड के किनारे में थी। जब राधा कुंड के किनारे में रघुनाथ दास गोस्वामी का शरीर समाप्त हो गया तो मुगलों का आतंक था उस समय, वो लोग मुगल लोग जो थे वो हिंदू सन्यासियों के मृत शरीर को समाधि से खोद खोद कर निकाल कर उसकी विटंबना करते थे। इस स्थिति को जानते हुए हमारे बुद्धिमान जीव गोस्वामी ने क्या किया, रिवाज था कि सन्यासी का शरीर दफनाना चाहिए, फिर भी उन्होंने एक अपमान को बचाने के लिए, विटंबना को बचाने के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी के शरीर को दहन किया उन्होंने और उनके राख से समाधि बनाई, और तब वो शिला जो थी वो जीव गोस्वामी के पास आई, वो उन्होंने उस मंदिर में उसको विराजमान किया। उसी मंदिर में बलदेव विद्याभूषण के राधा विजय गोविंद जी विराजमान हैं, लोकनाथ गोस्वामी के राधा विनोद विराजमान हैं। लोकनाथ जी महाराज छह गोस्वामी आने के पहले वृंदावन में आए थे और वन वन में रोते भटकते थे कृष्ण को ढूंढते हुए। एक बार खदीर वन में किशोरी कुंड के किनारे भजन कर रहे थे तो किशोरी कुंड से अचानक दो विग्रह राधा और कृष्ण के प्रकट होकर ऐसे उनके गोद में आ गए और हंस पड़े, अभी हम आपके साथ रहेंगे। उनका नाम राधा विनोद पड़ा क्योंकि आते ही हंस पड़े वो। तो इन्होंने यही कहा, तो मैं तो इतना विरह में इतना तप्त हूं कि ना मुझे खाने का होश है, ना रहने का होश है, ना सोने का होश है, मैं क्या करूंगा आपकी सेवा। बोला जो भी हो हम आपके संग रहेंगे। तो उन्होंने झोली बनाई और अपने झोली में उनको डाल दिया और दुनिया भर वृंदावन में घूमते रहे वो। फिर आखिर में वो वृंदावन में जब स्थित हो गए तो राधा विनोद जी भी वहीं पर स्थित हो गए। उसी मंदिर में लोकनाथ जी महाराज का शरीर समाधि में प्राप्त हुआ है। नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो चैतन्य महाप्रभु हैं वो भी उस मंदिर में विराजमान है। और नरोत्तम दास जी खेतुरी ग्राम में जब उनका शरीर समाप्त हो गया तो वो दूध बनकर पद्मा नदी में विलीन हो गए, उनका शरीर नहीं बचा। शिष्य लोग उनका अभिषेक करते रहे और वो पिघलते रहे और बाद में नहीं रहे, तो वहीं का मिट्टी और फूल लेकर उनका समाधि जो है वो वृंदावन में बनाया गया, पुष्प समाधि, वो भी उस मंदिर में विराजमान है। ऐसा अद्भुत नजारा है। फिर हमारे गिरिराज जी हैं, श्री गिरिराज गोवर्धन की, सबको भक्ति देने वाले, सबका जीवन प्रफुल्लित करने वाले श्री गिरिराज गोवर्धन, जो गोपियां भी उनको हरिदास वर्य मानती है। चैतन्य महाप्रभु बड़े सख्त कठोर सन्यासी थे, वो औरतों के द्वारा यूज किया हुआ चप्पल भी देखते नहीं थे, इतने कठोर सन्यासी थे। एक उनके शिष्य ने एक बुढ़ी औरत के सामने भिक्षा मांगी तो उसको उन्होंने अपना संगति से निकाल दिया, बोला गेट आउट, आप मेरे संग रहने के लायक नहीं हो, चले जाओ यहां से। इतने कठोर सन्यासी थे वो। वो गोपियों का नाम जप करते थे, जो स्त्रियां थी स्वयं लेकिन उनकी उच्च भक्ति को देखकर गोपियों का नाम और लीला जपते थे चैतन्य महाप्रभु। वो गोपियां जो स्वयं भगवान के द्वारा, भगवान के छन्न अवतार गौरांग महाप्रभु के अवतार के द्वारा भी पूजित थी, वो गोपियां इन गोवर्धन को हरिदास वर्य के नाम से पुकारती हैं, जो स्वयं हरिदास वर्य हैं गोपियां, श्रेष्ठ भक्त है भगवान की। वो गोपियां हरिदास गोवर्धन को देखकर कहते कि आप सब हरिदासों में से श्रेष्ठ हो, आप भक्ति देने वाले हो। उनकी महिमा इतनी अगाध है कि ये ऐसे जमुना जी, ऐसे जैसे जमुना जी हैं जैसे वैसे ही गोवर्धन पर्वत हैं। ये ब्रज के अविभाज्य अंग हैं, इनके बिना ब्रज अधूरा है। राधा रानी चाहती भी नहीं है ब्रज में आना अगर इसमें गोवर्धन और जमुना जी नहीं हैं। उन्होंने वादा किया था भगवान को, हम आएंगे लेकिन तब तक आंख नहीं खोलेंगे जब तक आप नहीं दिखेंगे, और तब तक नहीं आएंगे जब तक जमुना जी और गोवर्धन नहीं रहेंगे उसमें। तो भगवान ने कहा था कि आपके मंतव्य को जानकर मैंने पहले से ही ब्रज का, गोलोक का 84 कोस का हिस्सा गोवर्धन और वृंदावन और मथुरा अपना जमुना जी के साथ में पृथ्वी पर भेज दिया है। तब वो आई है। तो ये गोवर्धन राधा रानी के होने का भी एक प्रमाण है। गोवर्धन है तो राधा रानी है, यहां पर विहार कर रही है क्योंकि गोवर्धन है। और ये गोवर्धन आतुर थे कई साल तक, क्योंकि सत्ययुग में प्रकट हुई थी ना वो। तो त्रेता में जब ही भगवान रामचंद्र आए, सेतु बंध का काम शुरू हुआ, बहुत कम समय था, हनुमान जी यहां वहां उड़ रहे थे आकाश में, बड़े से बड़ा पहाड़ देख रहे थे कि एक झटके में काम हो जाए। तो ब्रज में आए तो देखा तो अरे ये तो 7 कोस का पर्वत, इतना सुंदर, एक उठाएगा तो पूरा 7 कोस का काम हो जाएगा। तो उन्होंने उठाने का कोशिश किया तो उठा ही नहीं हनुमान से वो। उन्होंने यहां गति लगाई अपनी तो यहां विस्तारित हो गए वो, यहां अंत नहीं मिला तो यहां गति लगाई तो यहां पर अंत नहीं मिला। तो चरण दंडवत प्रणाम किया कि भाई कौन हो आप, तो उन्होंने परिचय दिया, आप गोवर्धन हैं, क्यों उठाना चाहते हो? तुमने संक्षेप में कहानी बताया, प्रभु रामचंद्र की सीता का हरण हुआ है, सेतु बन रहा है लंका जी में जाने के लिए, आपकी सहायता जरूरी है। तो एकदम रूई की तरह हल्के हो गए, झट से उठा लिया, आकाश में गए, आकाशवाणी हुई, सेतु बंद पूरा हो गया है, अभी कोई पर्वत की जरूरत नहीं है, वापस नीचे आके रखा उनको। तो गोवर्धन जी इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, कितने समय के बाद में, दो युगों के बाद में, तीसरे युग के अंत में सेवा प्राप्त होने का अवसर आया, वो भी चला गया। इतने दुखी हो गए, इतना रन उनका रुदन, उनका रोना देकर हनुमान जैसे महान भक्त भी भाव विभोर हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। कैसा भक्त है, कैसी भावना है, कैसा प्रेम है, कैसा सेवा भाव है। भगवान को जाकर भर भर के बताया, कैसा कोई भक्त का दर्शन मैंने किया। भगवान ने कहा मेरा भक्त है गोवर्धन, सुझा के बताना बाद में कि मैं अगले अवतार में आऊंगा और मेरी सारी अंतरंग लीलाएं जो है वो आपके इर्द गिर्द करूंगा, और आपके आपका सात कोस का जो पर्वत का शरीर आपका मैं इस्तेमाल नहीं कर सका, अगले अवतार में 7 दिन और 7 रात आपको सर पे उठा के रहूंगा। इसलिए भगवान ने गोवर्धन के इस सेवा भाव के प्रतिसाद के रूप में इस लीला को संपन्न करके अपने सर पे धारण किया, छत्र के रूप में इतना सम्मान दिया उनको। यही गो गिरिराज जी आपके सामने प्रकट है, उनका सान्निध्य जो है वो हमारे भक्ति जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम, जो सच्चा भक्त है वो हमेशा गोवर्धन से प्रार्थना करता है कि हे गोवर्धन, आपके तलहटी में, आपके तल में कब निवास मिलेगा मुझे, क्योंकि आपके तल में निवास प्राप्त होना मतलब भक्ति का परम स्थिति को प्राप्त करना। ये भक्त की एक अंतिम इच्छा है कि वो राधा कुंड के किनारे गोवर्धन के तट पे निवास करें और भजन करें भगवान का, क्योंकि गोवर्धन जी भगवान का भक्ति देने वाले हैं। हर एक प्रामाणिक साधक को वो बड़ी कृपा करते हैं और कृष्ण की भक्ति देते हैं। हम जाकर उनके चरणों में गिरते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं इसी अभिलाषा से कि वो भगवान की भक्ति का एक सागर है, एक स्टोर हाउस है, वो एक कण भी हमका हमारा उससे प्राप्त हो जाए तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ऐसे गिरिराज जी बड़े दयालु हैं, विराजमान हैं, और एक रहस्य की बात ऐसी है कि जो ब्रज में गोवर्धन है वो अभी पुलत्स्य मुनि के शाप से उस दिन से जब से आए हैं तब से एक एक तिल के आकार से नीचे 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 जा रहे हैं। एक दिन वो जब घोर कलयुग आएगा तो वो नष्ट हो जाएंगे, लेकिन गोवर्धन इको विलेज के गोवर्धन जी वैसे ही रहेंगे। ये भी एक अद्भुत कृपा है भगवान की। तो जो भी होता है एक भगवान की दिव्य योजना का प्लानिंग है ये। उसके आगे काम्यवन प्रकट होगा, उसके आगे नंदगांव प्रकट होगा, उसके आगे बरसाना प्रकट होगा। श्री जी महारानी आज भी यहाँ व्यवहार कर रही है, उनके लिए महल बन रहा है, भानु महल, आपके आनंद के लिए, आपके नज़रों के परिपूर्णता के लिए। गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की असीम कृपा से यहाँ पर दिव्य धाम प्रकट हो रहा है। जो जो हुआ है उसको देख लीजिए, जो होने वाला है उसका ध्यान कीजिए, लेकिन चेतना का सेटिंग बनाए रखिए, तब असीम कृपा होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। अंतिम उद्देश्य इसका क्या है कि हमारे और आपके हृदय में श्री वृंदावन प्रकट होना है, मन मोर वृंदावन। ये सब आयोजन इसलिए है कि हम सबके हृदय के आंगन में ये वृंदावन प्रकट हो जाए, और जहाँ पर भी हम रहे वृंदावन में रहे, जहाँ पर भी रहे वृंदावन की चेतना में रहे, वृंदावन के भाव में रहे। और वृंदावन भाव का सार क्या है, एक है प्रेम और एक है सेवा भाव। जहाँ पर भक्त लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते हैं वही वृंदावन प्रकट होता है, नहीं तो वृंदावन नहीं प्रकट होता है। जब भक्त लोग झगड़ा करते हैं, वाद विवाद करते हैं, द्वेष करते हैं, गलत काम करते हैं, वहाँ वृंदावन प्रकट हुआ हुआ अदृश्य हो जाता है, अप्रकट हो जाता है। और जहाँ पर भक्त लोग प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हुए प्रेम से सेवा करते हैं, वहाँ पर बड़े प्रेम से वृंदावन धाम प्रकट हो जाता है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि प्रकट हुआ वृंदावन धाम की अनुभूति हम कर सकें। और एक ही रास्ता है उसके लिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।